जायसी का साधना पद। साधक जायसी आत्मा और परमात्मा के संबंध को बूंद और समुद्र के संबंध के समान मानते हैं। जीव परमात्मा के साथ एक था, परंतु अहंता के पास में पड़ते ही उससे पृथक हो गया। जैसे नदी में स्नान करने वाला व्यक्ति एक पैर के फिसलते ही संतुलन खो बैठता है और फिसलते फिसलते अंत में भंवर जाल में पड़कर डूब जाता है, उसी प्रकार मैं कहते ही जीव प्रभु से ऐसा दूर होता है कि फिर ओट पर ओट, आवरण पर आवरण और फाटक पर फाटक चढ़ते चले जाते हैं और जीव तथा प्रभु का अंतर भाव परक होता हुआ भी देश और काल जैसा अंतर बन जाता है। दार्शनिक क्षेत्र में प्रकृति के सत्व गुण से महत्त्व, रजोगुण से अहंकार और तमोगुण से पंच तन्मात्राओं की सृष्टि मानी गई है। रजोगुण प्रधान होने पर भी अहंकार के साथ सत्वगुण लगा रहता है। प्राकृतिक गुणों के ये तीन पर्दे ऐसे फाटक हैं जिनको खोले या तोड़े बिना जीवात्मा अपने प्रिय परमात्मा से मिल नहीं पाता और जब तक उससे वियुक्त रहता है तब तक जन्म और मृत्यु के थपेड़े इसे बार बार सहने पड़ते हैं। हाँ कहते भय ओट पिय खंड मोसो किए भय बहु फाटक कोट मोहम्मद अब कैसे मिलही। 16 अखरावट। यह जीव अणु रूप से शरीर के अंदर हृदय में निवास करता है और जैसे दीपक आरे में रहता हुआ समस्त घर में उजाला फैलाता है, उसी प्रकार जीव समस्त शरीर को अपनी शक्ति से ओतप्रोत करके उसे गतिशील बनाए रखता है। सुनहु वचन यह मोर दीपक जस आरे बरे सब घर होई अंजोर मोहम्मद तस जीव ही मह। 32 अखरावट। इस्लाम मजहब में जीव को स्वर्ग से अलग करने वाला इबलीस या शैतान है। जायसी ने इसे नारद का भी नाम दिया है। आयतु हूँ इबलीस जो टारे नारद होई नरक मह पारे। 6 आखिरी कलाम। जीव को संसार में आसक्त करने वाला इंद्रियों का चारा है। यह भुक्ति अथवा खाद्य के साथ लगी हुई तृष्णा ही उसे यहाँ ऐसा रमा लेती है। इंद्रियां अपने विषयों में फंस कर उनमें ऐसी रममाण हो जाती है कि यहाँ से निकलने के लिए तब तक नाम नहीं लेती जब तक कष्टों का पहाड़ इनके ऊपर आ नहीं टूटता अथवा जब तक विषयों के वास्तविक स्वरूप का बोध नहीं हो जाता। प्रभु के नाम का स्मरण अथवा उसकी ओर वृत्तियों को ले जाना संसाराशक्ति की अवस्था में अत्यंत कठिन है। ईश्वर ने भोग भुक्तियाँ यहाँ इतनी अधिक मात्रा में उत्पन्न कर दी है कि वे अपने मोहक रूप से जीव को सदैव आकर्षित किए रहती है। जीव को अपनी लंबी यात्रा में भोग ही भोग सूझ पड़ते हैं। साधना पथ में निरत बड़े से बड़े तपस्वी और सन्यासी भी इन भोगों की चपेट में आने से नहीं बच पाते। साधारण मोह मुक्त जीवों की तो बात ही क्या है। कामनाओं का अंजन सबको कालिमामय कुरूप और कायर बना देता है। ऐसे व्यक्ति विरल हैं जो शूरवीर बनकर कामनाओं से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं और माया जाल को लात मारकर छोड़ देते हैं। जैसी ने शरीर को रामपुरी दोहा संख्या 16 अखरावट लिखा है। अथर्ववेद ने इसे अयोध्या कहा है। राम की इस नगरी में देवता निवास करते हैं, परंतु असुरों से पादाक्रांत होकर बेचारे देवता भी अपना स्वत्व खो बैठते हैं और पराधीनता जन्य परिस्थिति में अपने उद्धार के लिए कुछ कर नहीं पाते। देवताओं का मार्ग सुई के नाके की भांति है, उत्थान के लिए उन्हें घोर परिश्रम करना पड़ता है। इसी शरीर में सुमेरु पर्वत के ऊपर अमृत जड़ी है। इस पर्वत पर चढ़ना और अमृत जड़ी को प्राप्त करना सरल कार्य नहीं है। जैसी की साधना में साधक के लिए पर्वत के ऊपर स्थित इस जड़ी को पहचान लेना अत्यंत आवश्यक है। राम की यह नगरी ही इसके लिए साधन क्षेत्र प्रस्तुत करती है। जिसने इस नगरी को कुकर्मों से कुत्सित कर लिया वह जायसी के शब्दों में धुंध में पड़कर अपनी नेत्र ज्योति खो बैठा। जो ज्योति बुद्धि के रूप में परमात्मा ने इसे प्रदान की है उसके विनाश से यह आपदाओं का आखेट बनता है। दूसरी ओर जो साधक इस ज्योति के प्रकाश में अपने को पहचान कर उस प्रभु से संबंध जोड़ लेता है वह भव सागर से पार हो जाता है। जायसी लिखते हैं जेई न चिन्हारी कीन यह जीव जो लही पिंड मह पुनि किछु करे न चीन्ह मोहम्मद यह जगधुंध होई। 19 अखरावट। केनोपनिषद भी शरीर के साधन महत्व को स्वीकार करती हुई कहती है कि यह चेत वेदी दस सत्य मस्ती न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। 2-5। संसार दुख और सुख दोनों के युग्म से बना है। यहाँ सुख भी है और दुख भी। जिसे हम सुख कहते हैं साधक उसे सुख नहीं समझता। उसकी दृष्टि में दुख का कुछ क्षणों के लिए अभाव हो जाना ही सुख है। यह आभास मात्र है, वस्तुतः विश्व सुखाक्रांत है। आनंद संसार का नहीं, इससे भिन्न किसी दूसरी सत्ता का गुण है। यह सत्ता समस्त साधकों का गंतव्य स्थल रही है। साधक कामनाओं की जलती और जलाने वाली अग्नि को जब पहचान जाता है तब उस अमृतमय की छाया में विश्राम पाने के लिए तड़प उठता है, तभी साधना यात्रा का प्रारंभ समझना चाहिए। जीवन के जिस बिंदु पर भुक्ति से मुक्ति की ओर मोड़ आता है, वही बिंदु साधन पथ का प्रारंभिक बिंदु है। वेद प्रभु की छाया को, उसकी शरण को अमृतमयी कहता है। यस्य छायामृतम् यजुर्वेद 25:32। मुक्ति रूपी कामनाओं का जाल तो धूप है। जयसी ने भी लिखा है, पथिक जो पहुँचे सही कह घामू, दुख बिसरे सुख होई विश्रामू। 27 पद्मावत। विश्व का दुख दग्ध प्राणी अनेक यातनाओं को सहन करने के उपरांत जब प्रभु की शरण रूपी सघन विशाल छाया में पहुंच जाता है, तभी उसे वास्तविक सुख और विश्राम प्राप्त होता है। ऐसे साधकों की संख्या विश्व में अधिक नहीं हो सकती। विरल है वे व्यक्ति जो इस कल्याण पथ पर प्रयाण करते हैं। साधन। जैसी ने इस विश्व को एक हार का रूप देकर लिखा है कि इसमें विक्रय वस्तुएं चारों ओर सजी सजाई दुकानों पर रखी हैं। यहाँ बेचने वाले भी हैं और खरीदने वाले भी, परंतु सबकी दशा एक समान नहीं है। किसी को यहाँ लाभ हो रहा है, किसी का लाभ और हानि बराबर है और किसी की केवल हानि ही हो रही है। हानि होते होते एक दिन ऐसा भी आता है जब व्यापारी व्यक्ति अपने मूल धन से भी हाथ धो बैठता है। कोई करह बेसाहनी काहू केर बिकाई, कोई चले लाभ सन कोई मूर गवाई। 37 पद्मावत। इतना होते हुए भी जीवन पथ के पथिक को इसी संसार के बीच से चलना पड़ता है। यदि चलेगा नहीं तो इस संसार से निकल कैसे सकेगा? न चलकर तो वह यही डूबा हुआ पड़ा रहेगा। यह चलना साधना पथ में कर्मकांड के नाम से विख्यात है। संसार की हाट में आकर हम सभी पथिकों को ऐसी वस्तुएं मोल लेनी चाहिए, ऐसी कमाई करनी चाहिए जो हमारी जीवन यात्रा में संबल का कार्य करें। व्यक्ति जब किसी वस्तु का क्रय करता है तो उसे उसके बदले में कुछ देना भी पड़ता है। क्रय करने में यदि हमने वस्तु की वास्तविकता और अनिवार्यता पर ध्यान रखा तो अपने बहुमूल्य परंतु अप्रयोज्य पदार्थों का दान भी हमें नहीं अकड़ेगा। अर्थशास्त्र के अनुसार वैभव चार प्रकार का है, आत्मगत, व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राष्ट्रीय। शरीर से लेकर बुद्धि तक जितना वैभव मेरे पास है वह मेरी आत्मगत संपत्ति है। गृह और उसका सामान, वस्त्र, बर्तन तथा धन आदि व्यक्तिगत संपत्ति है तथा इन्हीं दोनों संपत्तियों का वृंगित और समवेत रूप सामाजिक और राष्ट्रीय संपत्ति कहलाता है। अपने ज्ञान, कर्म और भाग्य के आधार पर मैंने जिस आत्मगत संपत्ति का अर्जन किया है वही मेरा मूल धन है। इस मूल धन के साथ जो कुछ मुझे क्रय करना है उसमें मेरा दृष्टिकोण मूल धन को सुरक्षित रखते हुए उसकी वृद्धि की ओर लगा रहना चाहिए। मुझे जागरूक और सचेष्ट रहकर अर्जित मूल धन में से तिल भर का भी अपव्यय नहीं करना है। जैसी के शब्दों में, अस मन जानी बेसाहो सोई, मूर न घटे लाभ जही होई। 13 आखिरी कलाम। आत्मगत संपत्ति की रक्षा के सामने व्यक्तिगत संपत्ति का कोई मूल्य नहीं है। मुसलमान एक ही जीवन में आस्था रखते हैं। मानव योनि उनकी क्या सभी की दृष्टि में सर्वोत्तम योनि है। जैसी पर आर्य संस्कृति का भी प्रभाव पड़ा है जिसके आधार पर वे प्राक्तन जन्मों में भी विश्वास रखते हैं। इसकी ओर हम जैसी पर पड़े हुए प्रभावों में संकेत कर चुके हैं। जैसी के विचार में मानव योनि एक अद्भुत कर्म स्थली है। इसी योनि में कर्म संपत्ति के बल पर इस संसार रूपी हाट में से हम अपनी अभिप्सित सामग्री मोल ले सकते हैं। जिसने यहाँ कुछ क्रय विक्रय नहीं किया वह अन्य योनियों में कुछ भी नहीं कर सकेगा। जिन एही हाट न लीन बेसाहा, ता कह आन हाट कितलाहा। 37 पद्मावत। अन्य योनियां तो भोग योनियां हैं, वे स्वाधीन कर्म की घृणा स्थली नहीं है, पर जैसा पीछे लिखा जा चुका है इस मानव योनि में आकर भी विरले व्यक्ति ही उस अमूल्य तत्व को मोल ले पाते हैं। हम में से अनेक व्यक्ति तो ऐसे हैं जो उस अमूल्य तत्व को, जो सूक्ष्म रूप में सर्वदा हमारे साथ रहता है, केवल बेचा करते हैं और परिणाम स्वरूप दुख, क्लेश, आपदा आदि मोल लिया करते हैं। अखावर दोहा खंड 19 में जैसी लिखते हैं, मानव परमात्मा ने नेत्र, श्रवण, रचना, हाथ तथा पैर सेवक के रूप में तुझे दिए हैं। इन्हीं के बल पर तू सुखों का उपभोग करता है। यदि इन अंग रूप सेवकों के द्वारा तूने गुणों के स्थान पर अवगुणों का उपादान किया तो मृत्यु के पश्चात तू प्रभु को क्या उत्तर देगा? बबूल के वृक्ष बोकर उनसे धान पाने की आशा करना जैसे निरर्थक है, उसी प्रकार अवगुणों के उपादान से सुख की आशा करना भी दुराशा मात्र है। मृत्यु के समय शव को शमशान भूमि तक पहुंचाकर परिवार तथा समाज के सभी व्यक्ति लौट आते हैं। उस समय केवल अपने गुण और अवगुण ही संगी साथी का काम करते हैं। जौ पहुँचाई फिरा सबको, चले सास गुण अवगुण दो। 385 पद्मावत। अंतिम यात्रा में धर्मात्मा पुरुषों के ऊपर भगवान की कृपा रूपी छाया होती है। उन्हें प्यास लगने पर पानी पीने को मिलता है, परंतु पापात्माओं को न छाया प्राप्त होती है और न पानी। मानव यहाँ जो कुछ करता है उसी को वहाँ पर प्राप्त करता है। यहाँ का लक्षाधीश अधर्म करने के कारण वहाँ आधी कौड़ी का पात्र नहीं रहता, यमराज के बंधनों में पड़कर धूप में खड़ा होता और संताप का भाजन बनता है। ते किछु धर्म कीन जग माहा, ते ही सिर पर किछु आवे छाहा, धर्म ही आनी पियाऊ पानी, पापी बपू रही छाह न पानी, चोरा छिपा सो काज न आवे, इहा का दीन उहा सो पावे, जो लखपति कहावे लह न कौड़ी आधी, 14,000 मोहम्मद ठाड़ कर ही तब बांधी। 30 आखिरी कलाम। पाप कर्म छिपाने से नहीं छिप सकता, हमारे अंग ही साक्षी बनकर उसे प्रकट कर देते हैं। हाथ पांव मुख काया, श्रवण तीस औ आंखी, पाप न छपे मोहम्मद अंत भरे सब साखी। 43 आखिरी कलाम। मानव का कर्तव्य यहाँ आकर निर्मल बनना है और पुण्य के संपादन द्वारा पापों का विध्वंस करना है। पाप पुण्य निर्मल कै धोऊब, राखब पुण्य पाप सब खोऊब। 44 आखिरी कलाम। चतुष्पद। सूफी संप्रदाय के अनुसार साधक की यात्रा में चार बसेरे पड़ाव या मंजिलें पड़ती हैं। जो साधक इन चार मंजिलों को पार कर जाता है वही सत्य के बल पर पार उतर पाता है। प्रथम पड़ाव का नाम शरीयत है। शरह को समझना, नियमों का ज्ञान प्राप्त करना साधक के लिए पहली आवश्यकता है, इसे ज्ञान कांड कहा जा सकता है। दूसरा पड़ाव तरीकत है, जिसमें तरीके के अनुसार कर्म करना, आचार निष्ठा या कर्तव्य पालन आता है, यह कर्म कांड है। तीसरा पड़ाव मार्फत है, जिसमें साधक ईश्वर के प्रेम में डूब जाता है, इसे भक्ति या उपासना कांड कह सकते हैं। चौथा पड़ाव हकीकत कहलाता है, यह वास्तविकता तथ्य अथवा अंतिम तत्व की प्राप्ति है। सूफी संप्रदाय के ये चार साधन भारतीय साधना पद्धति से मिलते जुलते हैं। हमारे चार वेद क्रमशः इन्हीं चार कांडों से संबंध रखते हैं। जैसी ने कर्म कांड के साथ ज्ञान के महत्व को भी स्वीकार किया है। वे लिखते हैं, अंध न रहो हो टिठियारा, चीनी ले हो जो दो ही समारा। 36 अखावर। जैसी प्रभु की पहचान को वास्तविक ज्ञान मानते हैं। जिस ईश्वर ने हमारा निर्माण किया है उसकी ओर से आंखें मूंद लेना भयंकर पाप करना है। जब तक सांस चलती है, प्राण शक्ति कार्य कर रही है, तब तक ईश्वर को पहचान लेना चाहिए। जो मानव अज्ञान के अंधकार में रहते हैं उन पर प्रभु कृपा नहीं करते। सतत जागरूक चेतन तथा सज्ञान मानव ही प्रभु के कृपा भाजन बनते हैं। मित्रालु व्यक्ति भ्रम में पड़े हुए न अपना ही कुछ भला कर पाते हैं न दूसरों का। अज्ञान की रात्रि में उनका जीवन व्यर्थ नष्ट होता है, पर जब ज्ञान रूपी प्रातः काल का उदय होता है तब ऐसे व्यक्ति हाथ मलकर रोते और व्यर्थ कालातिपात पर पश्चाताप करते हैं। देही पर भयो बिहान जब, रोई रोई मींजे हाथ। 20 अखावत। जो सेवक तो वह चित देई, तेही ठाकुर नहीं माया करेई। 20 अखावत। इच्छन्ति देवा सुनवंतम, न स्वप्नाय स्पृहयन्ति। ऋग्वेद 8:2-18। जैसे की सम्मति में साधक को सर्वप्रथम परम प्रिय प्रभु के मर्म अर्थात उसके रहस्य से अवगत हो जाना चाहिए। जिस व्यक्ति में जिज्ञासा की भावना नहीं है, जो जानने की इच्छा ही नहीं करता, वह साधन पथ पर चलने के योग्य नहीं है। ज्ञान का महत्व जैसे ने निम्नांकित दोहे में स्पष्ट किया है। जिन घर खेह उड़ाने, धुंधत गिरह सो खेह, अब सौ दृष्टि तब आवे, अंजन नैन उरेह। 510 पद्मावत। जिनके घर धूल में उड़ गए, जिन्हें माया ने पार्थिवता ने अभिभूत कर लिया, वे माया में ही लिप्त रहते हैं, धूली दूसरे की बने रहते हैं, वे मिट्टी है, राख हैं, उनमें चेतनता के सज्ञानता के स्फुलिंग प्रज्वलित नहीं है। यदि वे पुनः अपना घर देखना चाहते हैं, आत्म स्वरूप का साक्षात करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी आँखों में ज्ञानांजन लगाना चाहिए। जैसी ने प्रमाद की कई स्थानों पर निंदा की है। प्रमाद ऐसा शत्रु है जो जीव को जड़त्व के साथ एक कर देता है। ज्ञान और विवेक ही उसे जड़त्व से दूर करके आत्मा की चेतन स्थिति तक ले जाते हैं। श्रृंगारिक पद्धति में कहना चाहें तो ज्ञान का जागरण ही पत्नी को पति से मिलाने वाला है। निद्रा या स्वप्न तो उसे पति से मिलाने में बाधक ही सिद्ध होंगे। सबहु न जागा गात है सोई, जागे भेंट न सोए होई। 232 पद्मावत। जैसी ने इस जागरण को प्रिय सम्मिलन के पश्चात स्थिर रखना आवश्यक माना है। वियोग के कष्टों को सहन करने के उपरांत यदि प्रियतम से भेंट हो भी गई, तो क्षणिक भेंट का महत्व चिरकाल व्यापी तो नहीं हो सकता। संभव है यह भेंट साधक को सुला दे, उसे प्रभु से पुनः वियुक्त कर दे। अतः सदैव अप्रमाद सावधानता तथा चेतनता साधक के साथ बनी रहे, इसी में कल्याण है। सुख सो प्रीतम भेंट कै, सुख सो सोह न कोय, इह थाम मन डर पै, मिली न बिछोवा होए। 408 पद्मावत। शरीयत अथवा ज्ञान कांड में सत्संग, सत्य की जिज्ञासा, गुरु सेवा, रसूल की सेवा और नमाज अथवा कुरान का अध्ययन ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पद्मावत दोहा खंड 163 में जायसी ने सत्संग को उच्च पुरुषों के पास बैठना कहा है। वे लिखते हैं, सदा ऊंच से बारू ऊंचे सो कीजे व्यवहारू, ऊंचे चढ़े ऊंच खंड सूझा, ऊंचे पास ऊंच बुद्धि पूछा, ऊंचे संग संग नीति कीजे, ऊंचे काज जीव बलि दीजे। उच्च अर्थात सत्पुरुषों का साथ करने से मानव दुष्प्रवृत्तियों में पड़ने से बच जाता है, दूषित विचार दूर रहते हैं और बुद्धि निर्मल होकर सत्य ज्ञान का प्रकाश करने लगती है। सत्संग मानव को प्रतिदिन विकास की ओर अग्रसर करता है। सत्संगी ऊंचा उठता जाता है, अतः यदि कुछ कष्टों का भी सामना करना पड़े तो भी उच्च पुरुषों के सत्संग का संसर्ग का परित्याग नहीं करना चाहिए। सत्संग का सबसे बड़ा लाभ ज्ञान की प्राप्ति है। सत्संग सागर के अंदर सत्य की जिज्ञासा उत्पन्न कर देता है। हृदय यदि सत्य की ओर उन्मुख हो गया तो नेत्रों के आगे प्रकाश हो जाता है और मानव वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को देखने लगता है। जो सतही है तो सौ नैना ने दिया, समुद्र न डरे बैठी मर्जी का। 149 पद्मावत। सत्य पर उसकी इतनी दृढ़ आस्था जम जाती है कि वह प्राण परित्याग की आशंका में भी असत्य का उच्चारण नहीं करता। सत्य रूपी नाव पर बैठकर वह अनंत आपत्तियों के समुद्र को भी पार कर जाता है। कायर से कायर व्यक्ति भी सत्य के संबल द्वारा शूरवीर बन जाता है। सत्य कहत राजा जीव जाऊ, पै मुख असत नमाको काऊ। 93 पद्मावत। कायर चिरय हिय सतपुरा, जो जीन सत कायर पुनिसूरा। 150 पद्मावत। सत्संग का ही परमार्जित रूप गुरु सेवा है। गुरु का महत्व सूफी संप्रदाय में विशेष रूप से मान्य है। गुरु वही है जिसने स्वयं साधना करके अध्यात्म पथ का दर्शन किया है। जिसे स्वयं मार्ग का ज्ञान नहीं है वह दूसरे का मार्ग प्रदर्शन कैसे कर सकता है। साधक को जिसे मार्ग का कुछ भी अनुभव नहीं है, इसी हेतु एक अनुभवी गुरु के चरणों में बैठकर मार्ग का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। साधन पथ पर चलते हुए उसे अनेक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों से अनुभवी गुरु ही उसे मुक्त कर सकता है। यही ठाव कहाँ गुरु संग कीजिए, गुरु संग होई पार तो लीजिए। 156 पद्मावत। साधक को गुरु में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और उसे सर्वात्मना गुरु की सेवा में दत्तचित्त रहना चाहिए। जैसी के शब्दों में, जहाँ पाऊँ गुरु राख है, चेला राख है माथ। 147 पद्मावत। पैर रखने का तात्पर्य गुरु की ज्ञान गति से है और माथा रखने का तात्पर्य गुरु सेवा परायण बनकर शिष्य का गुरु वचनों को बिना न नू नच किए स्वीकार कर लेना है। गुरु ज्ञान देकर प्रभु विरह की चिंगारी साधक के हृदय में डाल देता है। साधक का कार्य चिंगारी को प्रज्वलित अग्नि में परिणत कर लेना है। गुरु विरह चिंगी पै मेला, जो सुलगाई ले सो चेला। 125 पद्मावत। गुरु चरणों की सेवा साधक को देव दर्शन करा देती है। देवों का स्वामित्व प्राप्त करके साधक भगवत भक्तों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है। देव दर्शन से उसके हृदय पर पड़ी हुई पाप कालिमा हट जाती है और वह पवित्र बन जाता है। जो 40 दिन सेवे बार बुहारे कोई, दर्शन होई मोहम्मद पाप जाए सब धोई। 9 आखिरी कलाम। अध्यात्म पथ का दर्शन मात्र करा देना गुरु का काम है और उस पर अग्रसर होना साधक का कार्य है। खलन की अवस्थाओं में गुरु साधक की सहायता भी करता है, फिर भी इस पथ पर साधक को अपने पैरों से ही चलना पड़ता है। जैसी लिखते हैं, आपू मरे बिनु स्वर्ग न छुआ। 35 अखावत। बिना अपने मरे स्वर्ग दिखाई नहीं देता। यजुर्वेद में लिखा है कि जीव को महत्व की प्राप्ति किसी अन्य के द्वारा नहीं होती, इसे वह स्वयं प्राप्त करता है। ज्ञान प्रदान में गुरु का महत्व असंदिग्ध है। जैसी गुरु में प्रभु की ही छाया का अनुभव करते हैं। तुम हो तो देखे हूँ प्रीतम छाया। 255 पद्मावत। गुरु सेवा के साथ जैसी ने हजरत मोहम्मद की सेवा में रहना भी साधक के लिए आवश्यक समझा है। पद्मावत दोहा खंड 11 में उन्होंने रसूल को परमात्मा का प्रथम प्रकाश कहा है। हजरत मोहम्मद ने दीपक के रूप में प्रकट होकर संसार को निर्मल कर दिया, जिससे अध्यात्म पथ के पथिकों को मार्ग दिखाई देने लगा। यदि रसूल न आते तो मानव अंधकार में ही भटकते रहते। हजरत मोहम्मद परमात्मा के संदेश वाहक हैं। जो व्यक्ति उनका नाम लेता है वह इह लोक तथा परलोक दोनों से पार हो जाता है। कयामत के दिन जब रूहों के कर्मों का, गुणों का और अवगुणों का लेखा जोखा होगा, उस समय जिसने रसूल की सेवा में जीवन व्यतीत किया होगा, हजरत मोहम्मद आगे बढ़कर उसके मोक्ष के लिए खुदा से विनय करेंगे। आखिरी कलाम दोहा खंड 37 में जायसी ने हजरत मोहम्मद को अपने अनुयायियों के समस्त दुखों को अपने ऊपर लेकर सहन करने वाला भी लिखा है। इसी ग्रंथ के दोहा खंड 41 के अनुसार वे स्वयं छाया में बैठना तब तक पसंद नहीं करते जब तक उनके अनुयायी उमस धूप में बंधन ग्रसित पड़े हैं। नमाज में कुरान की आयतों को पढ़ते हुए साधक भगवान की स्तुति और प्रार्थना में निरत होता है। आयतों का पाठ उसे ज्ञान भी देता है। अनेक सूफी साधक कुरान के पारायण को भी साधना के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। कुरान का कंठाग्रह करना प्रत्येक मुसलमान के लिए आवश्यक नियम है। जैसी ने नमाज को इस्लाम धर्म का स्तंभ लिखा है। उनके दृष्टि में जो नमाज पढ़ता है वही गुणवान है। कुरान में जो कुछ लिखा है उसी पर विश्वास करना चाहिए। शरीयत अर्थात शरह का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। उसी का आश्रय ग्रहण करके साधक भ्रम रहित होकर अपने गंतव्य को प्राप्त करता है। ना नमाज है जीनक थूनी, पढ़े नमाज सोई बड़गोनी, साची राय शरीयत जेही विश्वास न होई, पाँव राख की देही सीढ़ी निभरम पहुँचे सोई। 26 अखरावट। शरीयत के पश्चात तरीकत का मार्ग है। इस मार्ग द्वारा अहम भाव के साथ युद्ध करते हुए तथा इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए साधक प्रभु तक पहुँचने का प्रयत्न करता है। तरीकत में तप अर्थात द्वंद्व सहन, व्रत एकांत सेवन, मौन और जप समा आदि का अभ्यास आता है। जैसी की रचनाओं में तप का महत्व अनेक स्थानों पर प्रतिपादित हुआ है। नीचे इस विषय में संबंध रखने वाली कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की जाती है। ता तप साधहु इक पथ लागे, करहु सेव दिन रात सभागे, ओहि मन लावहु उरहै न उठा, सोरहु झगड़ा यह जग झूठा। 22 अखरावट। छाड़हु घी और मछली मासु, सूखे भोजन करहु गरासु, दूध मांस थियु करहु न आहारु, रोटी सानी करहु परहारु, यही विधि काम घटावहु काया, काम क्रोध तृष्णा मद माया, सब बैठहु वज्रासन मारी, कही सुख मना पिंगला नारी। 25 अखरावट। साधन सिद्धि न पाई जो लही सधै न तप। 123 पद्मावत। जैसे भट्टी दिन रात अग्नि से तपती रहती है उसी प्रकार साधक को अनवरत रूप से तपस्या में संलग्न रहना चाहिए। तप की इसी ज्वाला में प्रपंच अर्थात राग तथा द्वेष के धंधे दग्ध होते हैं। तपश्चर्या के उपरांत मानव सुख की छाया के दर्शन करता है और एक दिन उसके जीवन में ऐसा भी आता है जब उसकी आशाएं परिपूर्ण होती है और वह ब्रह्मानंद के रस स्वाद से तृप्ति लाभ करता है। जो अर्थसाधी आव तप जोगु, पूजे आसमान रस होगु। 158 पद्मावत। अभिलाषा के साथ यदि तपश्चर्या नहीं की गई तो फल की प्राप्ति असंभव है। अतः साधक को तप में प्रवृत्त होना ही चाहिए। तप शब्द व्यापक अर्थ रखता है। श्रीमद् भगवद गीता में उसके कायिक वाचिक मानसिक सात्विक राजस तथा तामस भेद किए गए हैं। गुरु विप्र देव आदि की पूजा, शौच सरलता, ब्रह्मचर्य अहिंसा, सत्य एवं प्रिय वाक्य, हितकारी भाषण, शास्त्रों का अध्ययन, मौन, विषयों से विरक्ति, भावों की शुद्धि, शरीर की तृष्णा, व्रत आदि सभी की गणना तप के अंतर्गत है। ऊपर जैसी की जो पंक्तियाँ उद्धृत की गई हैं उनमें जो सेवा भावना, मन को विषयों से विरक्त करना, विलासपूर्ण एवं उत्तेजक आहार का परित्याग, रूखे सूखे भोजन का ग्रहण, व्रत अथवा फलाहार, कामनाओं का परित्याग आदि तप के कई रूप आ गए हैं। जैसी ने शरीर की तृष्णा का उल्लेख कई बार किया है जो तप का ही परिणाम है। पद्मावत दोहा खंड 90 में उन्होंने लिखा है, रह जो पिय के आयसु, ओ बरत हो खीन, सोई चंद निर्मरी, जन्म न होई मलिन। प्रभु के आज्ञा पालन में जिसने शरीर को कृष कर डाला वह चंद्रमा के समान निर्मल बन गया। तब पवित्रता का संपादक है, ऐसा सभी साधकों ने अनुभव किया है। तब के अन्य रूपों में मौन, अवरोध, निर्लोभ, दान, तप, जप तथा स्मरण प्रमुख है। तरीकत में इन सबका समावेश होता है। नीचे क्रमशः इनके उदाहरण दिए जाते हैं। मौन। वह सब किछु कैसे कह कही, आपको विचारी बूझ चुप रही। 48 अखरावट। मौन गह तस गयो विमोही, हा निर्जीव जीव दीन सी ओही। 235 पद्मावत। अक्रोध। विरस विरोध ऋषि तय होई, ऋषि मारे तेहि मार न कोई, जेहि की ऋषि मरिय रस चीजे, तजे ऋषि कबहु न कीजे। 90 पद्मावत। निलोभ। मनुआ चहे दरब ओ भोगु, पंथ भुलाई विनाशय जोगु, जोगी मनही ओहि ऋषि मारही, दरब हाथ कै समुद पारही, दरब ले सो अस्थिर राजा, जोगी जोगी तेहि के ही काजा। 151 पद्मावत। दान। दिया सो काज दुहु जग आवा, इहा जो दिया उहा सो पावा, दिया करे आगे उजियारा, जहाँ न दिया तहाँ अंधियारा। 145 पद्मावत। उपर्युक्त पंक्ति में दिया शब्द में श्लेष है और उसके दीपक तथा दान दोनों अर्थों में संगति है। दोनों का कार्य जीवन मार्ग को प्रकाशित करना है। दान और सत्य अर्थात धर्म दोनों सहोदर हैं। जो दानी नहीं वह धर्मात्मा भी नहीं हो सकता। लोभ का साथी पाप है। 386 पद्मावत। जप। बैठी सिंह छाला हुई तपा पद्मावती पद्मावती जपा 167 पद्मावत सारथी बरिश जो लपई छपई छन एक गुप्त जाप जो जपई 38 अखरावट स्मरण करनी करे जो पूजे आशा संवरे नाव जो ले जाए सासा 38 अखरावट देकर पास अनपास कहो ही फिकिर संभारी के कहत रहे हर सांस मोहम्मद निर्मल होई तब 39 अखरावट शरीयत अथवा ज्ञान कांड भी तप की अपेक्षा रखता है ज्ञानार्जन में घोर तपश्चर्या करनी पड़ती है परंतु ज्ञान प्राप्ति के उपरांत तप छूट जाता हो ऐसी बात नहीं है ज्ञान के पश्चात वासनाओं के दमन के लिए पुनः तप में निरत होना पड़ता है ज्ञानी अपने ज्ञान के गर्व में जब प्रभु को विस्मृत कर देता है तथा ज्ञान का व्यापार करता हुआ संसार के धंधे में पड़ जाता है वैश्य वृत्ति पंडित होई सो हाट न चढ़ा जहाँ बिकाए भूलिका पढ़ा पढ़ी कुनी देखा बहुत मैं है आगे दरु सोई धंध जगत सब जानी के भूली रहा बुद्धि कोई 77 पद्मावत धारण कर लेता है उसका सारा ज्ञान ताप पर रखा रहता है और वह एक प्रकार से विलास के हाथ बिक जाता है महान से महान ज्ञानी यति और सन्यासी वणिक वृत्ति के चक्र में पड़कर धन के आगे अपना सिर झुका देते हैं इस प्रपंच से उनका उद्धार करने वाला तप ही है यह मानव को बुद्धि भ्रंश से बचाता है जैसी इसी हेतु लिखते हैं जोगी जति सन्यासी तब साधही तेहि आस 55 पद्मावत प्रपंच मानव को विश्व के कोलाहल में मग्न करने वाला है यह कोलाहल अशांति से ओतप्रोत है शांति का अभिलाषी साधक इसी हेतु इस कोलाहल से दूर एकांत शांत निर्जन वनों गुहाओं कंदराओं अथवा सरिता के निर्मल सैकत पुलिनों की शरण ग्रहण करता है यह एकांत सेवन उसे आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करता है और साधक वायुन्मुक्तता से हटकर अंतर्मुख बनता है आत्मज्ञान के लिए एकांत सेवन अमूल्य साधना है सो प्रगट मह आई भुलावे गुप्त में आपन दरस दिखावे 35 अखरावट पद्मावत में रतन सेन का निम्नांकित कथन इस विषय में कितना सार्थक है हौरे पंखेरु पंखी जही बन मोर निबाहु खेली चला तही बन कह तुम आपन घर जाहु 127 पद्मावत तरीकत में साधक को अहम भावना से संघर्ष करना पड़ता है हौ हौ में पड़ा हुआ व्यक्ति स्वार्थी है और भगवान का शत्रु है गर्व करे जो हौ हौ करई बहरी सोई गोसाई क अहई 19 अखरावट साधक भगवान का मित्र बनना चाहता है अथवा अहंकार के दमन में प्रवृत्त होता है अहम भाव के नाश से ही साधक आवागमन के जाल में पड़ने से बच पाता है रतन सेन गजपति से कहता है जो पहले सिर दय पगुधरई मुए केर मीचू ही का करई 142 पद्मावत तरीकत इस प्रकार पना की स्थिति के लिए आधार भूमि का कार्य करती है मार्फत में जाकर अहम भावना का संपूर्णतया दमन हो जाता है और साधक को सुदृढ़ भूमि प्राप्त हो जाती है मार्फत को हम अपने यहाँ का उपासना कांड कह सकते हैं इससे अहम भावना दूर होती है हृदय में आत्म ज्योति का उदय होता है और साधक आरिफ कहलाने की योग्यता प्राप्त करता है मार्फत के मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए साधक को सूफी साधना के सप्त सोपानों को पार करना पड़ता है ये 7 सोपान आत्मा अवस्थिति के लिए अनिवार्य माने गए हैं इनके नाम साधकों ने इस प्रकार दिए हैं तोबा जहद सब्र शुक्र रिजा तवक्कुल और रजा इन्हें हम क्रमशः पश्चाताप और प्रायश्चित स्वेच्छा दारिद्र संतोष धैर्य एवं कृतज्ञता दमन अथवा आत्म संयम ईश्वर कृपा पर पूर्ण विश्वास और तटस्थता अथवा वैराग्य कह सकते हैं तोबा पश्चाताप पश्चाताप अपने विगत दुष्कर्मों पर होता है प्रभु ने जो संपत्ति हमें प्रदान की है उसका जब हम सदुपयोग नहीं करते आत्महित के अतिरिक्त आत्मघातक कार्यों में उसका व्यय करने लगते हैं तो प्रभु हमें इस संपत्ति से वंचित कर देता है इस संपत्ति में सर्वश्रेष्ठ स्थान बुद्धि का है नेत्र श्रवण वाणी और मुख जैसे 4 रत्न भी प्रभु ने हमें प्रदान किए हैं जैसी की सम्मति में जब हम उनका दुरुपयोग करते हैं तो प्रभु हमें दैवी कोप से भस्म कर देता है जैसी लिखते हैं तीन रतन विधिचारी नैन बैन सर्वन्न मुख पुनि जब मेट ही मारी मोहम्मद तब पछिताव मैं 35 अखरावट सिद्ध पदारथ तीनी बुद्धि पाँव और सिर गया पुनि ले ही सब चीनी मोहम्मद तब पछिताव मैं 37 अखरावट पश्चाताप में विचारणा का भी जागरण होता है महादेव के मंडप में जब रत्न सिंह पद्मावती को देखते ही मूर्छित हो गया और पद्मावती उसके वक्षस्थल पर चंदन से कुछ अक्षर लिखकर विदा हो गई तो रत्न सिंह चेतना में आकर अपनी परिस्थिति पर पश्चाताप के साथ विचार करने लगा वह कहता है अनुहौ दोख देहु काहु संगी गया मया नहीं ताहु हतेउ प्यारा मीत बिछोई साथ न लागी आपु गैस होई काम है कीन जो काया पोखी दुखन मोही आप निर्दोखी। 204 पद्मावत। इसी प्रकार सिंघल से लौटते हुए अपने द्रव्य पर जब रत्नसेन को गर्व का अनुभव हुआ और परिणाम स्वरूप समुद्र में समस्त सामग्री के विलय के साथ पद्मावती और वह स्वयं पृथक पृथक दिशाओं में वियुक्त होकर बह गए तो रत्नसेन पश्चाताप करता हुआ रो रो कर कहने लगा, कासु पुकारो का पह जाऊं, गाढ़े मीत होई एही खाऊं। 406 पद्मावत। हाथ मरोरी धुने सिर माखा, पै तो ही हिय न उघरी आखी, बहुतन एस रोई सिर मारा, हाथ न रहा झूठ संसारा। 411 पद्मावत। रत्नसेन इस रोने सिर धुनने और हाथ मलमल कर पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं है। जिस ईश्वर ने प्राण और शरीर प्रदान किए हैं वह जब चाहे इन्हें ले सकता है, यदि वह संपत्ति देकर छीन लेता है तो इसमें हमारे पश्चाताप करने का कोई कारण नहीं है। तवक्कुल, ईश्वर कृपा पर विश्वास। पश्चाताप अंतर्मुखी वृत्ति उत्पन्न करके साधक को उसके मूल ईश्वर तक ले जाता है। वैभव की अवस्था में ईश्वर के प्रति जो विश्वास विचलित सा रहता है वह अनुपात की भट्टी में जलकर स्थिर और स्वर्ण के कुंदन में परिणत होने के समान दीप्तिमान बन जाता है। रत्नसेन की भी यही अवस्था हुई। सब कुछ खो देने के उपरांत उसने ईश्वर का स्मरण किया। ईश्वर विश्वास को दृढ़ निष्ठा उसके कहे हुए निम्नांकित वचनों से सिद्ध होती है। हे गोसाई तू सृजन हारू, तू सृजा यह समुद्र अपारू, सोई मूरुख बाउर और अंधा, सोई छाणी और ही चित बंधा। 407 पद्मावत। तू जीव तन मेरवसी दय आऊ, तू ही बिछो वसी करसी मेराऊ, सब कर मरम भेद तुही पाहा, रोम जमावसी टूट ताहा। 408 पद्मावत। इसी प्रकार जब सिंघलगढ़ के राजा ने रत्नसेन और उनके साथियों को घेर लिया उस समय भी रत्नसेन अपने हृदय में निहित अविचल ईश्वर विश्वास को प्रकट करता हुआ कहता है, प्रगट गुप्त सकल महिमंडल पूरी रहा सब ठाऊं, जहां देखाऊं वही देखाऊं, दोसर नहीं कहां जाऊं। 244 पद्मावत। आखिरी कलाम दोहा खंड 41 में जैसी ईश्वर कृपा पर अपनी अधिक आस्था प्रकट करते हुए लिखते हैं, कहब रसूल छाह का बैठो, उमत लागी धूपहु नहीं बैठो, जो मुहि चहो निवारहु कोहु, सब विधि करे उमत पर छोहु। रसूल अपनी उम्मत के लिए छाया में प्रवेश करना तो दूर धूप में भी बैठना नहीं, खड़े ही रहना चाहते हैं। उन्हें विश्वास है कि भगवान उनके तथा उनके अनुयायियों के ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। महरी वायसी पद खंड 16 में भी जायसी ने ईश्वर को कर्णधार अर्थात अपनी कृपा से जीव को भव सागर से पार करने लगाने वाला लिखा है। रजा, तटस्थता या वैराग्य। ईश्वर विश्वास का संबल लेकर साधक सुख दुख हर्ष विस्मय क्रोध शोक आदि सबसे तटस्थ हो जाता है। विश्व की ओर से विरागी बनकर वह ईश्वर की इच्छा में ही अपनी इच्छा के सार्थकता समझने लगता है। सिंघलगढ़ में नाग पाश से आबद्ध होकर रत्नसेन कहता है, भले आने गिव मेली फांसी, ये न सोच रोस रिसिनासी, नाग पास उन मेली गीवा, हरक न विस्मय एक और जीवा। 244 पद्मावत। रत्नसेन को न फांसी लगने का भय है, न उसके कारण कोई चिंता तथा शत्रु के प्रति किसी प्रकार की रोष भावना है। हर्ष और विस्मय से जीवन और मरण से वह एकदम तटस्थ वृत्ति धारण किए है। योगी बनकर चित्तौड़ छोड़ने पर भी रत्नसेन अपनी माँ के आगे वैराग्य वृत्ति का परिचय देता हुआ कहता है, मोही यह लोभ सुनाऊ न माया, का कर सुख का कर यह पाया, जौ नियान तन हो ही छारा, माटी पोखी मरे को भारा। 130 पद्मावत। दोहा खंड 132 में भी रत्नसेन ने अपनी पत्नी के समक्ष इसी प्रकार की वैराग्य भावना प्रकट की है। जहद, स्वेच्छा दारिद्र। जिन साधकों के अंदर वैराग्य वृत्ति घर कर लेती है वे स्वेच्छा पूर्वक दीन एवं दरिद्र रहना स्वीकार कर लेते हैं। जैसी ने पद्मावत दोहा खंड 130 में गोपीचंद को और 132 में भर्तृहरि को राज्य त्याग कर योगी हो जाने वाला लिखा है। योगी भोग विलास से विरत एवं तपश्चर्या के धनी होते हैं। उन्हें स्त्री राज्य वैभव उष्ण भोजन आदि किसी की इच्छा नहीं होती। रूखे सूखे अन्न को खाना, वन में रहना, रंग जैसा गैरिक वेश धारण करना उनके स्वभाव में सम्मिलित हो जाता है। योगी न काह भोग सो काजू, चहे न महरी चहे न राजू, जड़ कुरकुटा पे भक्खू चाहा, जोगिनी तात भात दहूं काहा। 132 पद्मावत। राजा रत्नसेन स्वयं अपने समस्त वैभव पर लात मार कर भिखारी बन गया था। स्वेच्छा दारिद्र का ग्रहण विशेष उद्देश्य पूर्वक किया जाता है। रत्नसेन के सामने उद्देश्य पद्मावती को प्राप्त करना था। पद्मावती अध्यात्म पक्ष में प्रियतम परमात्मा का ही रूप है। रत्नसेन कहता है, हो पद्मावती कर भिख मंगा, दृष्टि न आओ समुद्र और गंगा, यही कारण कि वो कांथरी कंथा जहाँ सो मिले जाऊं से पंथा। 143 पद्मावत। संसार के साधारण भोग पल पल में विनश्वरता का परिचय देते हैं, जो कि क्षणिकता से नहीं अमरता से प्रेम करता है और इसी अमृत के उपभोग के लिए वह भिक्षुक बनता है। राजा भय भिखारी सुनी वह अमृत भोग। 43 पद्मावत। सहज एक प्रकार से विलासी जीवन के साथ साधक का संघर्ष है, जिसमें वह स्वेच्छा दारिद्र लोक निंदा घृणा अपमान आदि के सहन द्वारा विजय प्राप्त करता है। रिजर्व आत्म संयम। स्वेच्छा दारिद्र वैराग्य वृत्ति आदि साधन साधक को आत्म संयम में प्रवृत्त कराने वाले हैं। आत्म संयम में इंद्रिय निग्रह और मन का दमन दोनों की गणना है। इंद्रिय निग्रह तरीकत में पूर्ण हो जाता है, अतः मार्फत के लिए साधक मन के दमन पर अपनी चित्त वृत्तियों को केंद्रित करता है। मन कोमल तथा कठोर दोनों प्रकार का है। इसकी कठोरता और कोमलता पुनः प्रवृत्ति और निवृत्ति के दो पक्ष धारण करती है। कोमल होने के कारण यह एक ओर वासनाओं की ओर द्रवित होता है तो दूसरी ओर ब्रह्मानंद के रसा स्वाद से भी जा पड़ता है। कठोरता यदि इसे सांसारिक पथ का त्याग नहीं करने देती तो दूसरी ओर निवृत्ति पथगामी बनकर यह वासनाओं पर निर्मम आघात भी करने से नहीं चूकता। यह अमर मन ज्ञान रूपी शिला पर घिसते घिसते ही घिस पाता है। मोहम्मद यह मन अमर है, कहो कि भी मारा जाई, ज्ञान शिला सौ जो घसे घसत ही घसत बिलाई। 422 पद्मावत। जायसी ने मन के संयम के लिए उस पनिहारिन का उदाहरण दिया है, जो अपनी शक्तियों से वार्तालाप भी करती जाती है पर अपनी आंतरिक वृत्ति को सिर पर रखे हुए जल से भरे घड़े में लगाए रहती है। बात सखी सो मन गागरी सो से ही विधि चित्त न डोले रे। 10 महरी 22। साधक इसी प्रकार संसार के समस्त व्यवहार करता है, परंतु गुप्त रूप से अपना मन ईश्वर में संलग्न रखता है। तू मन नाथ मारी कै सासा, जो पै मरही अब ही करो नासा, प्रगट लोक चार कहू पाता, गुप्त लाऊ मन जासा राता। 216 पद्मावत। चंचल मन को यदि पुचकार कर किसी ओर लगा दे तो वह वहाँ लग जाता है। मन की यही विशेषता सांप के समान उसके विषाक्त होने पर भी उसे अमृत बना देती है। जैसे सपेरा सांप को अपनी पिटारी में रखता है और बाहर निकलने पर अपने महुअर की मीठी रागिनी से मुक्त करके उसे अपने वश में रखता है, उसी प्रकार साधक मन को इंद्रिय विषयों से असंबद्ध करके आंतरिक विचार में मग्न रखता है और यदि बाहर निकालता भी है तो उसे प्रभु के गुप्त किंतु उन्मुक्त सौंदर्य से मुग्ध करके आत्म तत्व की अधीनता में रखता है। मनुआ चंचल ढाप बरजे अहथिर ना रहे, पाल पिटारे साप मोहम्मद तेही विधि राखिए। 38 अखरावट। मन के संकल्प विकल्प साधक को संशय की ग्रंथियों में डाल देते हैं। इन ग्रंथियों से उसकी मुक्ति तभी हो सकती है जब वह आत्मविश्वासी बनकर अपने समस्त मनोरथों को प्रभु के ऊपर आश्रित कर दे। जैसे इस प्रकार मन की चंचलता को दूर करने के लिए ज्ञान सौंदर्य तथा प्रभु का अवलंबन ग्रहण करना आवश्यक समझते हैं। रिजा योग दर्शन के प्रत्याहार और धारणा का सम्मिलित रूप है। इसमें साधक चित्त वृत्तियों के बहिर्मुख बहते हुए प्रवाह को अंतर्मुख करके मन को अंतर प्रदेश विशेष में बांध देता है। रिजा मन का दमन अथवा आत्म संयम इधर से उधर को रुजू अर्थात प्रवृत्त होने का नाम है। जैसे लिखते हैं, प्रेम तंतु तस लाग रहु करहु ध्यान चित बांधी, पारदी जैसे अहेर कहा लाग रहे सर साधी। 36 अखरावट। जैसे आखिर करता आखिर जो पशु की ओर अपना लक्ष्य वेद करता है, उसी प्रकार साधक को अपना चित्त प्रभु की ओर ले जाना चाहिए। शुक्र धैर्य एवं कृतज्ञता सभी पथ कंठ का किरण है, कोई भी मार्ग विघ्न बाधाओं से शून्य नहीं है। आत्म संयम की साधना में भी अनेक अंतराय उपस्थित होते हैं। जब आपदा रूपिणी सुरता सामने मुंह पाकर खड़ी हो जाती है तो बड़े से बड़े संयमी और मन के मालिक भी विचलित हो जाते हैं। ऐसे ही अवसरों पर साधकों के धैर्य एवं साहस की परीक्षा होती है। कष्टों के पहाड़ टूटने पर भी जो साधक अधीर न हो अपने साहस से काम ले, वही मन दमन की यात्रा पूरी कर सकता है। जायसी की सम्मति में जहाँ साहस है वहीं पर सिद्धि है, साहस जहाँ सिद्धि तहाँ होई। 146 पद्मावत। जब रत्नसेन किलकिला समुद्र की तरंगों में प्रविष्ट हुआ तो पर्वत के समान समुद्र की उठती हुई लहरों को देखकर उसके सभी साथियों का धैर्य जाता रहा, परंतु रत्नसेन ने धैर्य को अपने हाथ से न जाने दिया। मार्ग प्रदर्शक सुआ भी गुरु के रूप में साथी था। धैर्य एवं साहस द्वारा ही रत्नसेन उस प्रलयंकर समुद्र को पार कर प्रशांत मानसर सागर में पहुँच सके। सतह समुद्र मानसर आए, सत जो कीन साहस सिद्धि पाए। 158 पद्मावत। रत्न सेन की यह समुद्र यात्रा अध्यात्म पक्ष में साधक के साधन पथ की ही प्रतीक है। कष्ट कर अंतरायों के अतिरिक्त साधक के सामने कुछ लुभावने मोहक एवं सरस विघ्न भी सिद्धियों के रूप में आते हैं। यदि साधक इन सिद्धियों के झमेले में पड़कर अपने लक्ष्य से च्युत हो गया तो उसके समक्ष पुनः वही प्रपंच का गह्वर गर्त उपस्थित है। ऐसे अवसरों पर सिद्धियों को प्रभु का प्रसाद समझकर साधक को उनमें रमण तथा विश्राम नहीं करना चाहिए। प्रभु के सामने उसकी दी हुई देन के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए साधक को तीव्र वेग से इन सिद्धियों का अतिक्रमण कर जाना चाहिए, तभी वह अपनी यात्रा के गंतव्य की ओर बढ़ सकेगा। रत्नसेन ने स्वयं राजा गंधर्व सेन के सामने पद्मावती रूपी सिद्धि की प्राप्ति के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट की थी। आखिरी कलाम के प्रथम दोहा खंड में जैसी भी प्रभु प्रदत्त अपनी शारीरिक संपत्ति तथा सौभाग्य के लिए दयालु प्रभु के चरणों में अपना सिर झुकाते हैं। दीन है सी बदन स्वरूप रंग, दीन है सी माथे भाग, देख दयाल मोहम्मद शीश नाई पगलाग। एक आखिरी कलाम। सब्र संतोल। जो साधक स्वेच्छा दारिद्र को अपना चुका है वह कभी तृप्त न होने वाली तृष्णाओं के भंवर जाल में क्यों पड़ेगा। प्रभु जो कुछ देता जाए उसी में उसे संतुष्ट रहना है। प्रभु की दी हुई वस्तु को छीनकर यदि कोई अन्य व्यक्ति उसके सामने विलास के विपुल उपकरण उपस्थित करना चाहे तो भी वह उनकी ओर उन सब की ओर से उदासीन ही रहेगा। उसकी आकांक्षा प्रभु और उसकी दी हुई संपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी भी लुभाने वाली वस्तु की ओर नहीं जा सकती। जब पार्वती ने रत्नसेन के पद्मावती प्रेम के परीक्षार्थ स्वरूप अप्सरा का रूप धारण किया और उसे पद्मावती की ओर से विरत करना चाहा तो रत्नसेन अपने संतोष वृत्ति तथा एक निष्ठा का परिचय देता हुआ कहने लगा, भले ही रंग तो ही आचरी राता, मोही दूसरे सो भाव न पाता। 210 पद्मावत। संतोष ही साधक का वास्तविक धन है। बाह्य गृह संपत्ति आदि को वह प्रभु की ओर से दी गई उपयोगी सामग्री मात्र समझता है, उससे मोह नहीं करता। उसका विश्वास है कि आवश्यक पदार्थों को प्रभु स्वयं दे देंगे और सिर्फ व्यक्ति की इच्छा ही तो सब कुछ नहीं है, उसकी पूर्ति अथवा आपूर्ति प्रभु के ही हाथों में है। मानुष साज लाख मन साजा, साजा विधि सोई पै बाजा। 274 पद्मावत। अतः वह जो कुछ दे दे उसी में साधक को संतोष है। डॉक्टर ताराचंद ने निकलसन के आधार पर अपने ग्रंथ इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर के पृष्ठ 80 पर इन सब सोपानों में से शुक्र को फुक्र और रिजा को वारा नाम दिया है। ऊपर जिन सप्त सोपानों की व्याख्या की गई है वे साधक को मार्फत की उच्च भूमिका में पहुंचाने वाले हैं। हकीकत की राह में मार्फत अवस्था की प्राप्ति अनिवार्य समझी जाती है। जैसे कि मतानुसार मार्फत बाह्य गोचरों से असंपृक्त अपने मन के ही अंदर डूब जाने की दशा है। जब मन प्रभु का चिंतन करता हुआ चिंतन में ही अपने को डुबा दे और स्थिरता पूर्वक दीर्घ काल तक इसमें डूबा रहे तब मार्फत अवस्था की सिद्धि समझनी चाहिए। राह हकीकत पर न चुकी, पैठ मार्फत मार बुड़ूगी। 26 अखरावट। मार्फत योग दर्शन के ध्यान के समान है। संतों ने इसी को उन्मनी अवस्था कहा है जिसमें माया से रूठ कर दृष्टि ऐसी उल्टी हो जाती है कि वह माया को मिथ्या जानकर पुनः उसके पास लौट कर नहीं आती। उल्टी दृष्टि माया सो रूठी, पलटी न फिरी जानी के झूठी। 125 पद्मावत। साधना क्षेत्र में इसका उच्च एवं महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे लिखते हैं, साई के भंडारो बहुमानिक मुक्ता भरे, मन चौरही पैसारो मोहम्मद तो छुपाइए। 21 देखी समुद्र महासीप बिनु बूढ़े पावे नहीं, होई पतंग जलदीप मोहम्मद से ही धसी लीजिए। 27 अखरावट। अंदर प्रभु का भंडार अमूल्य मणि मुक्ताओं से भरा पड़ा है। यदि मन रूपी चोर अंदर घुसकर वहां प्रकाश वहां प्रवेश कर सके तो उसे कुछ न कुछ तो अवश्य प्राप्त हो सकता है। समुद्र में मोतियों को उत्पन्न करने वाली अनेक सीपें पड़ी हैं। जैसे पतंगा दीपक के ऊपर अपने को न्यौछावर कर देता है वैसे ही यदि कोई व्यक्ति मर्जीवा गोताखोर बनकर समुद्र के अंदर डुबकी लगा सके तो मुक्ति रूपी मुक्ताओं की जननी इस सीप जैसी मार्फत या उन्मनी अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए मन रूपी मानसरोवर का मंथन करना पड़ता है। मोहम्मद मोती समुद्र काढ़ो मथन आरम्भ के। 30 अखरावट। सतत अभ्यास के द्वारा ही मन प्रभु के ध्यान में डूबने की क्षमता प्राप्त करता है। जैसे दही के ऊपर की साड़ी मथाने की चोट खा खा कर फूटती है तो लगातार बिलोने की क्रिया द्वारा निर्मल स्निग्ध मक्खन मट्ठे के ऊपर तैरने लगता है, उसी प्रकार शरीर की शुद्ध बुद्ध भुलाकर पंचभूतों को मारकर निरंतर निधिध्यासन में मन को डुबाया जा सके तो नवनीत जैसे निर्मल ज्योतिर्मय आत्म साक्षात्कार की उपलब्धि हो सकती है। तन सजी मन महाभूल मोहम्मद तब पहचानिए। 31 अखरावट। मार्फत अहम भावना का विनाश कर देती है। जीवन में तो व्यक्ति अहम को आपे को खोकर प्रिय को प्राप्त करता है। जिसने अपनी आंखों से अपने मरण का यह खेल देख लिया वह बार बार के मरण से पार हो गया, युग युग के लिए सिद्ध हो गया। सिद्ध होई सो जुग जुग ताई 37 अखरावट। वेद के शब्दों में विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, अपने विनाश से ही मृत्यु को मारा जा सकता है। जायसी भी लिखते हैं, कटु है पीयू कर खोजा, जो पावा सो मर जिया 23 अखरावट। मुवसी न जौलही जीवसी न तौलही, जो मरी जिये सो नाचे रे 17 मही 22। तीनों जीव दिए न पावे कोई, जो मर जिया अमर भा सोई 37 अखरावट। प्रिय की खोज सरल नहीं अत्यंत दुर्धर्ष है। इस खोज में अपने को मिटा देना पड़ता है। जिसमें अपने को मिटा देने की शक्ति नहीं उसके लिए प्रिय की खोज अरण्य रोदन है, आकाश का पुष्प है। जो लही आपु हिराई न कोई, तो लही हेरत पाव न सोई 124 पद्मावत। हाथ चढ़ो सो देही कैर, प्रथम जो आपु ही नाश 233 पद्मावत। पर इस मिटने के पश्चात जिस जीवन का उदय होता है वह सहस्त्रवार वर्णीय है। मुद और प्रमुद की सीमा है, आनंद का धाम है। बिना अपनी बलि चढ़ाए वह प्राप्त नहीं होता। मर्जीवा बनकर ही मानव अमर होने का अधिकारी बनता है। मार्फत की अवस्था जैसा पीछे लिख चुके हैं, बुद्धि जन्य नहीं अनुभूति जन्य होती है। इससे साधक पवित्र बन जाता है और जैसे निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब पूर्ण और शुद्ध पड़ता है, वैसे ही साधक के पवित्र हृदय में प्रभु की ज्योति का प्रत्यक्ष और यथार्थ दर्शन होता है। अस निर्मल जस दर्पण आगे, निश दिन तोरी दृष्टि मोहि लागे 41 अखरावट। हठ योग, मार्फत की सिद्धि के लिए जायसी ने नाथ पंथियों के हठ योग का भी सहारा लिया है। हठ योग में यम नियम आसन आदि के द्वारा शरीर की शुद्धि, प्राणायाम के द्वारा नस नाड़ियों का परिमार्जन, प्रत्याहार द्वारा इंद्रिय निग्रह और धारणा तथा ध्यान द्वारा मन का संयम किया जाता है। प्राण तथा अपान क्रिया में जो सोहम की ध्वनि होती है वही अनाहत नाथ के श्रवण के समय ओम में परिणत हो जाती है। इससे साधक को अनुपम धैर्य प्राप्त होता है। सोहम सोहम बसी जो करई, जो बुझे सो धीरज धरई 53 अखरावट। दोनों आंखों की दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करके सीधे उसी के साथ संसरण पथ या राजपथ पर चलते हुए दोनों भौहों के बीच में उसे जमा देना त्राटक की साधना कहलाता है। यह सब केवल इसलिए करना पड़ता है जिसमें साधक उस अमूल्य अंतर्हित तत्व को अपने ही अंतर्गत देख सके। जैसी कहते हैं, गढ़ दस बांक जैसी तोरी काया, परखी देख हुए ओही की छाया, नौ पौरी देही गढ़ मझियारा, और तहां फिर रही पांच कुटवारा, दसम द्वार गुगुत एक नाकी, अगम चढ़ाव बाट सुठी बांकी, भेदो कोई जाई ओही घाटी, जो लही भेद चढ़े होई चाटी, गढ़तर कुंड सुरंग तेही माहा, तेही महापंथ कहा तो ही पाहा, जस मर्जिया समुद्र धसी, हाथ आओ दब सीप, ठूंढी ले जो सरक द्वारी, चढ़े सुसिंघल दीप 215 पद्मावत। दसों द्वार ताल क्या लेखा, उलट दृष्टि जो लाओ सो देखा, जाई सो तहां सास मन बांधी, जस धसी लीन कान कालंदी, तू मन नाथ मारी कै सासा, जो पै मरही अब ही करू नासा 216 पद्मावत। संतों ने कहा है, जो इस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में है। विराट का सूक्ष्म रूप या उसकी छाया यह शरीर है, मानव का पार्थिव व्यक्तित्व है। इस पार्थिव पिंड शरीर के ऊर्ध्व स्थान में देवकोश अर्थात स्वर्ग है, वैसे ही जैसे पृथ्वी और अंतरिक्ष के ऊपर द्यूलोक। पिंड के नव द्वारों या ज्योड़ियों से निकलकर साधक जब दशवें द्वार पर पहुंचता है तो यह स्वर्ग दिखाई देने लगता है। यह दशम द्वार ताड़ वृक्ष के समान ऊंचा है। इसे देखने के लिए दृष्टि उल्टी करनी पड़ती है, त्रोटक की साधना करनी पड़ती है, सांस मार कर प्राणायाम करके मन को नाथना पड़ता है। मन को नाथने के उपरांत इस हों मैं अर्थात अहंकार के भाव को नष्ट कर देना पड़ता है। अहंकार नष्ट हुआ तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जैसी ने हठ योग की क्रियाओं की उपयोगिता प्रकट की है और कई स्थानों पर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना आदि नाड़ियों का वर्णन करते हुए साक्षात कृत ज्योति का उल्लेख किया है। जैसी ने इस स्वर्ग तक पहुँचने को दुर्लभ एवं कृत्य साध्य माना है। है तो यह हमारे अत्यंत निकट पर निकट होते हुए भी बहुत दूर अर्थात दुष्प्राप्य रहता है। उपनिषद के ऋषि तो अत्यंत स्पष्ट वाणी में तद दूरे तदंति के तथा शुरस्य धारा निशिता दुरस्य या कहते हैं। जैसे कि निम्नलिखित पंक्तियां इस संबंध में मनन करने योग्य हैं। देखी एक कौतुक हो रहा अंतर पट पै नहीं आहा, सरवर देख एक मैं सोई, रहा पानी पै पानी न होई, सरग आई धरती मह छावा, रहा धरती पै धरत न आवा, तेही महा है पुनि मंडप ऊंचा करन अहा पै कर न पहुंचा। 571 पद्मावत। यह कौतुक कितना विचित्र है। इसके और साधक के बीच में आवरण है भी और नहीं भी। यह उस सरोवर के समान है जिसमें जल दिखाई दे रहा है पर जो पीने में नहीं आता। इस कौतुक में स्वर्ग पृथ्वी पर छाया हुआ प्रतीत होता है पर वह हाथों की पकड़ से परे है। यह अद्भुत दृश्य करतल गत होता भी प्राप्ति से बहुत दूर है। वहाँ तक पहुँचने की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए जैसे लिखते हैं, सो बड़ देख गगन ते ऊंचा नैनन देखा कर न पहुँचा चांद सूरज और नखत तराई सही डर अंतरिक फिर ही सबाई पौन जाए जहाँ पहुँचे चाह मारा तैस लोटी भूई रहा अग्नि उठी चरी बुझी नियाना धुआं उठा उठी बीच पिलाना पानी उठा उठी जाय न छुआ बहुरा रोई आई भूई छुआ। 161 पद्मावत। स्वर्ग रूपी गढ़ आकाश से भी ऊंचा है ऊपर है नेत्रों से दिखाई दे जाता है पर हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इसके भय से सूर्य चंद्र नक्षत्र तारकावली सब के सब अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। पवन वहाँ तक पहुँचने की अभिलाषा करता हुआ आगे बढ़ता है पर बेचारे पर ऐसी मार पड़ती है कि लौटकर पृथ्वी पर लौटने लगता है। अग्नि भी जोर मारकर उठती है पर अंत में जल जलकर बुझ जाती है। धुआं उठता है और उठकर बीच में ही विलीन हो जाता है। पानी उसे छूने के लिए चलता है पर छू नहीं पाता और लौट कर रोता हुआ आंसुओं के रूप में पृथ्वी पर टपकने लगता है। केनोपनिषद में इसी प्रकार आत्म तत्व तक पहुंचने में अग्नि वायु जल आदि की असमर्थता का वर्णन उपलब्ध होता है। फिर भी जो साधक साधन करता हुआ निरंतर इस पद पर चलता रहता है वह उसे प्राप्त कर ही लेता है। सिंहलगढ़ के वर्णन में जैसे लिखते हैं, नवो खंड नव पौरी और तहां वज्र की वार चारी बसेरे सो चढ़े सब तो उतरे पार। 41 पद्मावत। शरीर रूपी गढ़ के नीचे कुंड है जिसके अंदर से एक सुरंग जाती है। इस कुंड में ही कुंडलिनी शक्ति है जो इस सुरंग के मार्ग से ऊपर चढ़ती है। यह सुरंग सुषुम्ना नाम की नाड़ी है। हठ योगियों ने मेरुदंड के सामने स्थित सुषुम्ना नाड़ी में मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 10 चक्रों का नाम लिया है। जैसी ने दशम चक्र या द्वार को नव खंडों की नव पौरियों त्योरियों के ऊपर माना है। दशम द्वार को उपनिषद के ऋषि ब्रह्मरंध्र या विकृति द्वार कहते हैं। यही सहस्त्रार चक्र है। कबीर ने इसे गगन स्वर्ग शून्य और बेहद नाम दिया है। आज्ञा चक्र तक इस लोक की हद या सीमा मानी जाती है। इसके आगे की अवस्था बेहद है असीम है। इस दशम द्वार को खोलना सड़क द्वारी में लगे हुए वज्र किवाड़ों को तोड़ देना सरल कार्य नहीं है। इस घाटी में एक पैर से चलना पड़ता है। जैसी ने इसे चीटी की चाल कहा है। जो साधक स्वर्ग के इस द्वार को ढूंढ लेता है वही स्वर्ग रूपी गढ़ में प्रवेश करने का अधिकारी बनता है। प्रेम पथ मार्फत की अवस्था अहंकार के विनाश के पश्चात साधक को ईश्वर के अनुराग में तन्मय करने वाली है। संसार की ओर से जब मन मर गया तो वह प्रभु प्रेम में ही आसक्त होगा। यहाँ का लगाव छूटने पर वहाँ के लिए प्रेमोदय होना स्वाभाविक है। पना के पश्चात बका आनी ही चाहिए। ईश्वर अनुराग या इष्ट मार्फत के भावावेगमय रूप का ही नाम है। पद्मावत में जब सुआ रत्न सेन का संदेश लेकर पद्मावती के पास पहुंचा, तो पद्मावती ने उसके सम्मुख प्रेम की विशेषताओं का वर्णन करके रत्न सेन को अयोग्य सिद्ध करना चाहा। इस वर्णन में प्रेम पथ की रूपरेखा बहुत कुछ स्पष्ट हो गई, अतः उसे हम ज्यो का ज्यो नीचे उद्धृत करते हैं। कहे सी सुआ मोसो सुन बाता चहो तो सौ आज मिलो जसराता वह तो मरम न जाना भोरा जानी प्रीति जो मर गया जोरा हो जानती हो अब हूँ काचा ना जय प्रीति रंग थिर राचा ना जय भयो मलय गिरी बासा ना जय रवि होई चढ़ा अकाशा ना जय भयो मोर कर रंगू ना जय दीपक भयो पतंगू ना जय करा भिंग कह होई ना जय आप मर जीव कोई ना जय प्रेम और एक भयो ना जय हिये मान जय डर गयो। 231 पद्मावत। जैसी के सामने प्रेम पथ की साधना का आदर्श यही है। पद्मावती के शब्दों में प्रेमी को सर्वप्रथम प्रियतम के मर्म उसके रहस्य से अवगत हो जाना चाहिए। ज्ञान के उपरांत प्रेम आता है जिसे हम जानते ही नहीं उससे प्रेम कैसा। प्रेम विशिष्टता सम्मिलित होता है। यह विशिष्टता ज्ञान द्वारा ही उपलब्ध होती है तो ज्ञान को हम प्रेम साधना का प्रथम सोपान कहेंगे। वियोग भावना। ज्ञान ही संसार में भूले हुए साधक को प्रभु का स्मरण कराता है। उसे याद आती है कि इस दुखपूर्ण अवस्था से पूर्व वह अपने प्रभु के साथ एक था। जहाँ धरित्री और स्वर्ग मिले हुए थे जीव और ईश्वर संयुक्त थे वहाँ से इन्हें किसने वियुक्त कर दिया। धरती सरग मिले हुत दो केई निनार के दीन बिछोऊ। 213 पद्मावत। ज्ञान की यह चिंगारी साधक को वियोग भावना से अभिभूत कर देती है। वह अधीर और व्याकुल हो उठता है। जब अज्ञान था प्रिय के साथ एक होने का भान ही नहीं था, तब तक जैसे दिन व्यतीत हुए हो गए, पर अब ज्ञान होने पर प्रिय के नाम का ध्यान आने पर धैर्य कहाँ। वियोग की अनुभूति जीव को सब कुछ छोड़कर प्रिय प्रभु से मिलने के लिए अधीर कर देती है। सौ लगी धीर सुना नहीं पीऊ, सुना तो धरी रहे नहीं जीव। 226 पद्मावत। जी घटी जान बिनाण है, तिही घटी आवरणा खणा। कबीर ग्रंथावली पृष्ठ 51 दोहा 8। प्रभु का विरह साधक को काल से भी अधिक कठोर जान पड़ता है। विरह में तिल तिल कर जलने की अपेक्षा वह मृत्यु के आलिंगन को श्रेयस्कर समझने लगता है। मृत्यु तो एक बार में ही प्राण लेकर चल देती है, परंतु विरह में अनेक बार प्राणांत पर प्राणांत का सामना करना पड़ता है। विरहा कठिन काल कह कला, विरह न सही अकाल बरु भला। काल काल जीव ले सितारा, विरह काल मारे पर मारा। 249 पद्मावत। विरही अपने को संभाल नहीं पाता, न उसे शरीर की सुध बुध रहती है, न परिधान की। प्रिय की रट लगाते लगाते उसका सारा मुख सूख जाता है। विरह न आप संभारे, मैल चीर सिर रूख। पीव पीव करत रात दिन, पपिहा भई मुख सूख। 226 पद्मावत। विरह वज्राग्नि से भी अधिक भयंकर है। अग्नि तो जल पड़ने पर शांत हो जाती है, पर विरह सांत्वना के जल सीकर पाकर और भी अधिक उत्तप्त होता है। जायसी के शब्दों में सूर्य इसी विरहाग्नि में जलता हुआ दिन रात भ्रांत रहता है। क्षण भर में वह सूर्य स्वर्ग तो क्षण भर में ही पाताल जा पहुंचता है। धन्य है विरही जो वियोग ताप को सहन करता हुआ अंदर ही अंदर सुलग सुलग कर कोयला होता रहता है, परंतु अपने दुख को बाहर प्रकट नहीं करता। उसकी वियोगाग्नि प्रिय के प्राप्त होने पर ही शांत होती है। विरह बजा की बीच का कोई, आगी जो छुए जाई जरिसोई। आगी बुझाई ढोई जल काढ़ है, यह न बुझाई आगी असी बाढ़ है। विरह की आगी सूर नहीं टिका, राती हूँ दिवस जरा औधिका। खिन ही सरग खिन जाई पतारा, फिर न रहे तेरी आगी अपारा। सुलगी सुलगी भीतर होई त्यामा, प्रगट होई न कहा दुखनामा। 180 पद्मावत। जैसी ने प्रभु विरह के अनुभव करने वाले साधक की भूरी भूरी प्रशंसा की है। वियोग की जिस चिंगारी का नाम सुनते ही पृथ्वी और आकाश विचलित उठते हैं। धन्य है विरही और धन्य है उसका हृदय, जहाँ विरह की वह चिंगारी ही नहीं उसकी समस्त ज्वाला समा जाती है। मोहम्मद चिंगी अनंग की सुनी मही गगन डराई, धनी विरही और धनी हिया जेही सब आगी समाई। 205 पद्मावत। जैसे प्रत्येक स्थान पर ज्योतिर्मय नग उपलब्ध नहीं होते, प्रत्येक प्रकार के जल में मोती गर्भित सीप नहीं मिलती, प्रत्येक वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रभु की विरह भावना भी उत्पन्न नहीं होती। थल थल नग न होई जही ज्योति, जल जल सीप न उपजय मोती। वन वन विरह चंदन नहीं होई, तन तन विरह न उपजय सोई। 311 पद्मावत। विरले अध्यात्म पद के पद की स्वरा भाव का अनुभव कर पाते हैं। जब प्रिय निकटतम होते हुए भी दूर से दूर रहे, तब प्रेमी के विरह संताप का पारा सहन शक्ति के चरम बिंदु का स्पर्श करने लगता है। पुष्प में सौरभ तथा दुग्ध में घृत की भांति व तत्वों का तत्व सब में ओतप्रोत है। वह प्यारा प्रभु इस घट को ही अपना घर बनाकर रमण कर रहा है। आत्मा के अंदर ही परमात्मा विराजमान है। देश तथा काल की किंचित मात्र भी दूरी दोनों में नहीं है, परंतु भावना की दृष्टि से परमात्मा जीव से जितनी दूर है। साधक प्रभु का सामीप्य चाहता है और उसे वह प्राप्त नहीं हो पाता। उससे असंपृक्त तथा दूर रखी हुई वस्तुएं उसकी वासना भूमि के जितनी निकट हैं, उतनी ही दूर उसे अपना प्रिय प्रभु प्रतीत होता है। यह दूरी किस दिन दूर होगी, कभी होगी भी या नहीं, यही तो साधक के संताप का विषय है। साधक की स्थिति अति क्लेशकारिणी है। इस दशा में प्रेमी साधक जैसे अग्नि के कौर खाकर जीवन धारण कर रहा हो। फूल बास घी छीर जिमी, नियर मिले इकठाई। सस कंता घट घर कै, जियाऊ अग्नि कह खाई। 644 पद्मावत। प्रेम का महत्व। प्रेम पथ में ज्ञान के साथ श्रद्धा मिली रहती है, श्रद्धा ही अंत में प्रेमा भक्ति में परिणत हो जाती है। जैसी का साधना पथ प्रभु प्रेम का पथ है। यह पथ कठिन है, जो इस पथ पर चलता है उसे अपना शरीर समर्पित कर देना पड़ता है। प्रिय के साथ यह प्रेम मर कर जोड़ा जाता है। प्रेम सुनत मन भूल न राजा, कठिन प्रेम सिर दे तो छाजा। 97 पद्मावत। प्रेम की महत्व को स्वीकार करते हुए जैसी लिखते हैं, भले ही प्रेम है कठिन दुहेला, दुई जग तरा प्रेम जे खेला। दुख भीतर जो प्रेम मधु राखा, जग नहीं मरण सह है जो चाखा। जो नहीं सीस प्रेम पंथ लावा, सो पृथ्वी मह काहे का आवा। 98 पद्मावत। पृथ्वी पर जन्म लेकर जिसने प्रेम पथ को स्वीकार नहीं किया उसका जीवन ही व्यर्थ है। विश्व निस्संदेह दुखाक्रांत है, पर इस दुख में यदि कहीं सुख की छाया है तो वह प्रेम रूपी मधु के अंतर्गत है। जिसने इस मधु को चख लिया वह संसार के मरण चक्र में पड़ने से बच गया। जो एक बार प्रेम के रंग में रंग गया उसे फिर न भूख लगती है न नींद आती है, विश्राम का तो उसे पता ही नहीं। देही के लिए प्रेम रंग जागा, प्रेम रंग जामा, कात ही भूख नींद विश्रामा। 139 पद्मावत। प्रेम मार्ग की कठिनाइयों के सामने सांसारिक विघ्न बाधाएं अत्यंत तुच्छ जान पड़ती हैं। और यही समुद्र प्रेम कर देखा, तेही यही समुद्र बूंद करी देखा। 142 पद्मावत। प्रेम पथ पर पथिक अपने प्राणों को हथेली पर रखकर चलता है और समझ लेता है कि फांसी की रस्सी उसके गले में ही झूल रही है। मैं पीऊ पांद ओ ही दिन मेला, यही दिन प्रेम पंथ हुई खेला। 244 पद्मावत। जैसी ने प्रेम मार्ग के प्रवीण पथिकों के रूप में गोपी चंद, भर्तृहरि और गोपिकाओं का नाम अनेक बार लिया है। अर्ध चेतन जगत के पक्षी मयूर, तीतर, कौड़िया, सारस, चकोर, चातक आदि के प्रेम की भी उन्होंने प्रभुत प्रशंसा की है। सत्य प्रेम के आगे अग्नि भी अग्नि नहीं रहती, उसकी दाहकता चंदन की शीतलता में परिवर्तित हो जाती है। सती जो जरे प्रेम पिए लागी, जो सत ही है तो शीतल लागी, शीतल आगी। 173 पद्मावत। प्रेम की अग्नि में जलने वाले की व्यथा व्यर्थ नहीं जाती, तब कभी सुफल लाती ही है। तेही जी प्रेम चंदन तेही आगी, प्रेम की आगी जरा जो कोई, ताकर दुख न अभिरथा होई। 152 पद्मावत। प्रेम में यदि वियोग की वेदना है तो आनंद भी है, मधु और अमृत प्रेम के घर में ही निवास करते हैं। प्रेम ही माह विरह और रसा, मैन के घर मधु अमृत बता। 166 पद्मावत। प्रिय और प्रेमी दोनों के बीच यदि कोई अंतर रहता है तो प्रेम उस अंतर को दूर कर देता है। वही यही बीच की प्रेम ही पूजा, तन मन एक की मार्ग दूजा। 209 पद्मावत। सूर के शब्दों में एक प्राण द्वय देहरी, दो शरीरों के अंदर एक ही प्राण निवास करने लगता है। यही नहीं, जैसी ने तो प्रेम के द्वारा प्रेमी के प्राण को प्रिय के शरीर में ही प्रविष्ट करा दिया है। रूप तुम्हार जीव के पिंड कमावा फेरी, आप हिराए रहा कहीं काल न पावे फेरी। 256 पद्मावत। प्रेमी प्रिय के शरीर में अपने प्राणों को प्रविष्ट करके जैसे खो गया हो, और जिसने अपने आप को खो दिया उसे मृत्यु कैसे खोज सकती है। यह है प्रेम का अभिनव अवतार। सुंदर और कुरूप की परिभाषा करते हुए जैसे प्रेम को कितना ऊंचा उठा देते हैं। लौनी बिलौनी तहा को कहे, लौनी सोई कंस जही चहे। 84 पद्मावत। जिसको प्रियतम का प्रेम प्राप्त है वही सुंदर है, और जिसे प्रिय प्रभु नहीं चाहते वह कंचन काय होते हुए भी कुरूप है। धन्य है प्रेम का मंगल मार्ग जो कुरूप को भी सुरूप कर देता है। पर इस प्रेम में व्यभिचार, विकल्प या भी चिकित्सा नहीं होनी चाहिए। यदि प्रेम में अस्थिरता है, क्षणिकता है, तो वह प्रेम साधक के किसी काम का नहीं। प्रेम का रंग स्थिर होना चाहिए। ना यही प्रीति रंग थिर राजा। 231 पद्मावत। राम नाम रंग लागव कुरंग न होई, हरी रंग सौ रंग और न कोई। और सब रंग इही रंग थे छूटे, हरी रंग लागा कदय न फूटे। कहे कबीर मेरे रंग राम राई, आर पतंग रंग उड़ जाई। कबीर ग्रंथावली पद 215 पृष्ठ 161। श्याम रंग रांची ब्रजनारी, और रंग सब दीने डारी। कुसुम रंग गुरुजन पितु माता, हरिद रंग भैनी अरूप राता। दिनाचारी में सब मिटी जय है, श्याम रंग अजरावत रह है। सूर सागर 2530। स्थिरता एक निष्ठा की द्योतक है। प्रेम को इसी से अविचल तथा दृढ़ स्वरूप प्राप्त होता है। जो आज एक से प्रेम करता है और कल उसे छोड़कर दूसरे से प्रेम करने लगता है वह वार वनिता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। साधना तो संयम से होती है, एक निष्ठा और दृढ़ता का होना उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रेम के साथ साधना में एक विशेष प्रकार का सौरभ या आकर्षण आ जाता है। इस सौरभ को जैसी मलयगिरी का सौरभ कहते हैं। मलयगिरी पर उत्पन्न चंदन की सुवास इतनी तीव्र और प्रभाव उत्पादक होती है कि वह मलयाचल पर स्थित कंकोल, कुटस तथा कड़वे नीम तक को चंदन जैसा ही सुवासित बना देती है। कंकोल निम्ब कुटजा अभिचंदना स्युः, संस्कृत की एक सूक्ति। नीम, कंकोल आदि की कड़वाहट चंदन पर अपना असर नहीं करती, प्रत्येक चंदन की सुगंध ने अपने रंग में रंग लेती है। इसी प्रकार साधक को अपने वातावरण में आने वाले सामान्य व्यक्तियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, वरन अपने सदाचार के सौरभ से उन्हें स्वासित कर देना चाहिए। इस अवस्था की प्राप्ति के लिए साधक को निरंतर सावधान रहने की आवश्यकता है। उसे अपने पथ पर फूक फूक कर पैर रखना चाहिए। उसे प्रकाशमान सूर्य बनकर आकाश में चढ़ना है। भट योग की प्रक्रिया में कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर शरीर या आकाश की ओर चलती है। इस उमा को पर्वत मेरुदंड में स्थित सुषुम्ना नाड़ी पर चढ़कर महादेव की प्राप्ति के लिए तप करना ही पड़ता है। साधक को इसी प्रकार अपनी साधना सतत जागरूक रहकर करनी पड़ती है। थोड़ा सा स्खलन भी उसे गिराने के लिए पर्याप्त तो होता है। अतः जायसी ने साधक के प्रयत्न को सूर्य का आसमान पर चढ़ना कहा है। प्रयत्न करते हुए साधक के मार्ग में विघ्नों का आना स्वाभाविक है। इन विघ्नों, बाधाओं तथा आपत्तियों की साधक को चिंता नहीं करनी चाहिए। इनका सामुख्य करते हुए, इन्हें कुचलते हुए उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। जैसे भौरा गुलाब या केतकी के कांटों की परवाह नहीं करता, भौर न देख केत कर कांटा, 234 पद्मावत, वैसे ही प्रेम पथ के पथिक को विघ्नों की ओर अपना ध्यान नहीं ले जाना है। भौरा काला होता है और काले रंग के लिए कहा गया है कि उस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। इसी प्रकार साधक के ऊपर विघ्न बाधाओं का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उसे भौरों की भांति कष्ट कंटकों से निरपेक्ष हो जाना चाहिए। विघ्न बाधाओं की ओर से निरपेक्ष होकर प्रेमी को अपने पथ पर अग्रगामी होना है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे अपना सर्वस्व वैसे ही आहूत कर देना है जैसे फतिंगा दीपक पर आहूत हो जाता है। बलिदान और त्याग की यह भावना प्रेमी साधक की सर्वोत्तम श्री है, यही उसका भूषण है। अपने उद्देश्य के लिए आहूत होना, बलि चढ़ जाना, मर जाना आगामी निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। अपने बलिदान द्वारा ही हम मृत्यु का भयंकर सागर पार कर सकते हैं, जिसके पश्चात आता है अमृत्व का महामूल्यवान निर्वाण। बलिदान के साथ जायसी ने भृंग की कला, भृंग की भांति भिनभिनाते हुए पतंग को अपना जैसा बना लेने पर भी बल दिया है। गुरु के प्रसंग में उन्होंने इस कला का विशेष रूप से उल्लेख किया है। सूफी संप्रदाय में गुरु भक्ति को आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी समझा गया है। शिष्य में प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न कर देना गुरु का ही काम है। जायसी ने लिखा है, आई प्रेम रस कहा संदेशा, गोरख मिला मिला उपदेशा, शब्द एक उन कहा अकेला, गुरु जस भृंग फनिक जस चेला, भिंगी ओ ही पाख पहली एक ही बार छीन जीव दे, 182 पद्मावत। यह है भृंगी रूपी गुरु, जो पतंगे रूपी साधक के पुराने स्वरूप को ध्वस्त कर उसे नवीन रूप, अपना रूप प्रदान कर देता है। इसी प्रकार के ध्वंस या मरण की आकांक्षा कौन नहीं करेगा, जो अपने उपरांत अमृत दान देकर सर्वदा के लिए साधक को जीवित कर देता है। निर्माण के लिए ध्वंस का, जीवन के लिए मृत्यु का और अमृत के लिए मरण का वर्ण करना साधारण लोग के लिए अलौकिक बात है। 99 के चक्र में ग्रसित व्यक्ति को यह उल्टी बात प्रतीत होगी। जैसे भी इस पंथ को संसार से विपरीत पंथ कहते हैं। उल्टा पंथ प्रेम के 12 चढ़े सरक जो पर है पतारा, 229 पद्मावत। प्रेम का पथ ऐसा ही है। यह पथ संसारी पथ से एकदम भिन्न है। इसकी दिशा उस लोक पथ से उल्टी है। इस पथ में स्वर्ग तक चढ़ने के लिए प्रथम पाताल में प्रवेश करना पड़ता है। स्वर्गीय दिव्यता पार्थिवता को बिना समाप्त किए प्राप्त नहीं होती। प्रेम पथ का पथिक अपने पार्थिव अंश का ध्वंस प्रसन्नता पूर्वक करता है। जैसी लिखते हैं, जाकर जीव मरह पर बसा, सूर्य देखी सो कस नहीं हसा, 261 पद्मावत। जो मरने के उपरांत अमर होता है वह फांसी पर चढ़ते हुए क्यों न हंसेगा। जैसे के शब्दों में प्रेम ही मनुष्य को स्वर्ग का अमर देवता बनाने वाला है, अन्यथा मुट्ठी भर धूल के अतिरिक्त उसका अस्तित्व और है ही क्या। मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, नाही तकाह चार भर मूठी, 166 पद्मावत। वस्द तथा वस्ल, ईश्वर अनुराग की तीव्रता साधक को स्वभावतः वस्द उन्माद या समाधि की अवस्था तक ले जाती है। प्रेम पंथ दिन घड़ी न देखा, तब देख है जब होई सरेखा, जेही तन प्रेम कहा तेही मासू, कया न रक्त न नैन नि आंसू, 127 पद्मावत। इस अवस्था में तन्मयता, अनन्यता, प्रेमी का प्रिय के प्रेम पारावार में आकंठ मग्न हो जाना, उसके ध्यान में तद्रूप हो जाना अपने आप आ जाता है। जैसी से प्रेम में औट कर पग कर एक हो जाना कहते हैं। इस अवस्था में प्रेमी के सामने प्रिय के अतिरिक्त और कुछ अवशिष्ट नहीं रह जाता, स्वयं उसकी अपनी सत्ता भी नहीं रह जाती। इसी को वस्ल अर्थात सत्य स्वरूप प्रभु की उपलब्धि भी कहते हैं। 3 पड़ाव। साधना के पथ में साधक सर्वप्रथम अपने प्रिय का ज्ञान प्राप्त करता है। यह इस पथ का प्रथम पड़ाव है। इस अवस्था में ज्ञाता और ज्ञेय दोनों पृथक पृथक है। ज्ञेय का वैभव, उसका आकर्षण एवं महत्व ज्ञाता के सामने प्रतिपल विद्यमान है। वह अपनी हीनता और ज्ञेय की प्रबलता बराबर अनुभव करता रहता है। धीरे धीरे साधना पथ पर चलता हुआ साधक ज्ञेय से प्रेम करने लगता है। प्रेम की प्राथमिक अवस्था में भय सहित सेवा की भावना प्रमुख रहती है। प्रभु अपना है ऐसा समझकर प्रेमी गर्व नहीं करता। प्रिय के प्रेम को प्राप्त करने के लिए वह सतत संकोची तथा विनम्र बना हुआ उसकी सेवा में निरत रहता है। ऐसा गर्व न भूले कोई, जही डर बहुत प्यारी सोई। 79 पद्मावत। ता कहां विलंबु न कीजे बारी, जो पिय आया सो सोई प्यारी। 301 पद्मावत। सोई प्यारी पिय ही प्रीति, रह जो सेवा आये सो जीती। 381 पद्मावत। इस प्रकार प्रेमी उपासक अपने प्रिय उपास्य की उपासना में उसके उप समीप आसन जमाकर बैठकर प्रथम पड़ाव वाली दूरी को दूर कर देना चाहता है। साधक अपने साधक की, भक्त अपने भगवान की सेवा में लगा हुआ उसके साथ स्वामी सेवक गुरु शिष्य पिता पुत्र अथवा पति पत्नी जैसे संबंध का अनुभव करने लगता है। वह श्रुति के शब्दों में तम अस्माकम तव स्मसी का रूप धारण कर लेता है। वह समझता है भगवान उसके हैं और वह भगवान का है। वह साधना पथ का दूसरा पड़ाव है। इस पड़ाव में दूरी कम हो गई पर वह अभी अपना अस्तित्व रखती अवश्य है। साधना के अंतिम पड़ाव में यह दूरी एकदम दूर हो जाती है। उस समय भक्त भगवान में, साधक साध्य में तन्मय हो जाता है और अपने अस्तित्व को प्रभु के अस्तित्व में लीन कर देता है। अपनी एकांत विस्मृति और प्रिय की सतत स्मृति उसकी संगिनी बन जाती है। दीपक की बत्ती जैसे अग्नि की लौ के साथ एक हो जाती है, उसी प्रकार साधक साधना करते हुए इस तीसरे पड़ाव में अपने साध्य या लक्ष्य में लीन हो जाता है। द्वितीय पड़ाव वाले संबंध का अनुभव दूर होकर साधक के समक्ष केवल संबंधी रह जाता है। साधक का अपना रूप साध्य का रूप बन जाता है अथवा साधक और साध्य दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। अब भय कहाँ, शोक कहाँ, मोह कहाँ। जैसे इस अंतिम अवस्था को जेही ही मान जे डर गये कहकर वर्णन करते हैं। उपनिषद कहती है द्वितीया द्वय भयम भवति, भय तो दूसरे से होता है। जब प्रभु के अतिरिक्त अन्य कोई रहा ही नहीं तो भय कैसा। यह है निर्भयता की भूमिका, अद्वैत की अवस्था, भूमा का स्वरूप, जिसके लिए श्रुति कहती है यस्मिन सर्वाणि भूतान्यात्मैव भूत विजानतः तत्र को मोह क शोक एकत्वम अनुपश्यतः। यजुर्वेद 40:7। जायसी ने साधना पद को अपनी बृहद अन्योक्ति के कथानक में संगठित करने का प्रयत्न किया है। पद्मावत में जिस चित्तौड़ का वर्णन है वह यह शरीर ही है। राजा रत्नसेन मन है, सिंगलगढ़ हृदय है, पद्मावती बुद्धि है, सुआ गुरु है, नागमती संसार का प्रपंच है, अलाउद्दीन माया है और राघव चेतन शैतान है। पर सामान्य रूप से कथानक में राजा रत्नसेन साधक के रूप में है। गुरु रूपी सुआ से पद्मावती का वर्णन सुनकर साधक रत्नसेन उसकी छवि पर मुग्ध हो जाता है। यह गुरु द्वारा साधक को प्रदत्त प्रभु का ज्ञान है। इसी ज्ञान से वह पद्मावती की ओर आकर्षित होता है। यही वह चिंगारी है जिसे सुलगाकर रत्नसेन ने प्रज्वलित ज्योति रूपी पद्मावती के दर्शन किए। पद्मावती की छवि की झलक पाकर ही रत्नसेन उसके प्रेम में योगी बना था। उसके प्रेम की परिपक्वता और स्थिरता पार्वती के सामने प्रकट होती है जब वह कहता है भलेरी रंग अचरी तोर राता, मोही दूसरे सो भाव न बाता। 210 पद्मावती। प्रेम की इस अविचलित अनन्य अवस्था का मूल्य कितना अधिक है इसे रत्नसेन के शब्दों में ही सुनिए। अब ही ताही जीव दे ही न पावा, तो ही असी अचरी ठाड़ी मनावा। जो जीव दे ही हो ओही के आशा, न जनो काह को काह होई कैलासा। 210 पद्मावती। यह है स्थिर प्रेम का महत्व। यह प्रेम स्वर्ग में स्थित इंद्र के सिंहासन तक को डगमगा सकता है। जायसी ने कथानक की योजना पद्मावत में इस प्रकार की है कि कहीं कहीं पद्मावती भी साधक या भक्त का रूप धारण कर लेती है। रत्नसेन जब दिल्ली में बंदी हो गए तो पद्मावती का रुदन, वियोग व्यथा का वर्णन, दिल्ली जाने और रत्नसेन को छुड़ाने का प्रयत्न आदि सभी बातें उसकी साधना में आने वाली कठिनाइयों को सूचित करती हैं। रत्नसेन की प्राप्ति उसकी सिद्धि की सूचक है, पर यह सब संयोजन आर्य आदर्शों के उद्घाटन प्रयत्न में अपने आप संपन्न हो गया है। जैसी को इसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ा। साधना पथ के विघ्न। पद्मावत की वस्तु योजना का पूर्वार्ध प्रायः सबका सब कल्पित है और उसके साधन पथ में आने वाले विघ्न तथा उनके उपरांत आने वाली स्थितियों का एक विश्लेषण क्रम स्पष्ट दिखाई देता है। अध्यात्म की अद्भुत झलक तो कवि बराबर देता गया है। सप्त समुद्र वर्णन में खारे समुद्र की लहरों के साथ नौकाओं का उत्थान और पतन उस सांसारिकता का द्योतक है जिसमें पड़ा साधक कभी अपने लक्ष्य की ओर देखता है और ऊंचा उठता है पर पुनः वासनाओं के थपेड़े खाकर नीचे गिर पड़ता है। क्षीर समुद्र विश्व में अदृश्य रूप से फैली हुई लक्ष्मी की ओर निर्देश करता है। साधक का मन इसे देखते ही चंचल हो उठता है। द्रव्य और भोग की लालसा उसे घेर लेती है तथा योग मार्ग से भ्रष्ट कर देती है। साधक साधना पथ से परांगमुख हो इस घातक शत्रु के चंगुल में फंस जाता है और अपनी समस्त अर्जित साधन संपत्ति से हाथ धो बैठता है। यदि साधक इसकी चपेट में आने से बच गया तो आगे दधि समुद्र की दाहक स्निग्धता अपने समग्र मोह दल को लेकर उसके आगे खड़ी हो जाती है। इस मोह में अपार जलन है। इसमें मलयज शीतलता और विषाक्त दाहकता दोनों एक साथ कार्य करती हैं। दधि और उदधि समुद्रों की आग्नेय भयंकरता साधना पथ की विरह व्याकुलता पश्चाताप आदि भावनाओं को प्रकट करती है। सुरा समुद्र क्षणिक सिद्धियों की मादकता के साथ आत्म विस्मृति और प्रेम के नशे का द्योतक है। किलकिला समुद्र की मध्य धार में पहुंचकर कोई काहू न संभारे आपुन आपुन होई वाले दृश्य का उपस्थित होना साधना पथ के विघ्नों और विपत्तियों की पराकाष्ठा सूचित करता है। इसकी भयावह हिलोरें बड़े से बड़े धैर्यधारी साधकों के भी छक्के छुड़ा देती हैं। मृत्यु और जीवन, निराशा और आशा के इस प्रलयंकर मध्य बिंदु पर झूलता हुआ प्राणी एक बार तो हताश हो ही जाता है, पर जो इसे पार कर गया वह सबको निगल जाने वाले काल के गराल काल में जाने से बच जाता है। साधक इन समस्त कष्टों को झेलता हुआ जो आगे बढ़ता रहता है उसका कारण प्रिय की वह बांकी झांकी है जिसकी एक क्षणिक झलक बहु वह गुरु कृपा से प्राप्त कर चुका है। यह झलक उसके कमल रूपी नेत्रों में भ्रमर रूपी पुतली बनकर बैठ जाती है और ऐसी विद्ध हो जाती है कि फिर निकाले नहीं निकलती। कमल नयन होई भंवर बैठा रहा बेदी उड़ी सकेसी न लोभी 314 पद्मावत। इसी छवि की झलक के सहारे साधक अपनी यात्रा में अग्रसर होता है और मार्गापन्न कष्टों की विभीषिकाओं से शंकित चिंतित एवं विचलित नहीं होता। दुख की चरम सीमा के पश्चात वास्तविक सिद्धि के पूर्व की वह प्रशांत अवस्था साधक के समक्ष उपस्थित होती है जो मानसर समुद्र के वर्णन में प्रकट हुई है। दहिने शंखन सिंगी पूरे बाएं पूरी बाध दिन झूरे तेली बैल जस बाएं फिरे परा भौर मह सौहन तिरे तुरी और नाव दाहिन रस हाका बाएं फिरे कोहार का चाका दहिने फिरे सो अस उजियारा जस जग चांद सूरज अवतारा मोहम्मद बाई दिसी तजा एक सर्वन एक आखी जब ते दाहिन होई मिला बोलू पपीहा पाखी 367 पद्मावत। जायसी ने वाम तथा दक्षिण दो मार्गों का उल्लेख किया है जो उपनिषद प्रतिपादित प्रेय तथा श्रेय दो स्मृतियों की याद दिलाते हैं। जो योगी श्रृंगी तथा शंख को दाहिनी ओर से न बजाकर बाईं ओर से बजाते हैं वे योग साधना में सफल नहीं होते। वे व्यर्थ में ही अपने जीवन के दिन पूरे कर रहे हैं। तेली का बैल वाम पार्श्व से चलता है तो भंवर चक्र में ही पड़ा रहता है, वह सामने होकर पार नहीं जा सकता। कुंभकार के चक्र की चाल भी वाम है। वाम पथ निकृष्ट है, तमोमय है और अकीर्तिकर है। घोड़ा नाव और रथ दक्षिण की ओर चलते हैं और प्रशंसा पात्र बनते हैं। जो दक्षिण मार्ग का अनुसरण करते हैं वे सूर्य चंद्र और नक्षत्रों की भांति उज्जवल बनते हैं। जायसी कहते हैं जब से मैंने वाम पक्ष के श्रवण तथा नेत्र का परित्याग किया है अर्थात बाईं ओर से न मैंने सुना है न देखा है तब से दक्षिण मार्ग का आश्रय लेकर पपीहे की भांति मैं अपने प्रिय के स्मरण में लगा रहता हूँ। जो साधक वाम मार्ग को पहचानकर उसका परित्याग कर देते हैं और दक्षिण पथ से चलते हैं वे ही आत्म तत्व का साक्षात कर सकते हैं। दाहिन बाम बूझ कै होई रहु तो आप ही पहचाने उरे 12 मही 22। साधना पथ में साधक का सबसे बड़ा शत्रु गर्व अथवा अहंकार है। गर्व से फूला हुआ अहंकार से अपने को ही सब कुछ समझने वाला व्यक्ति अभागा है। वह अध्यात्म यात्रा के सर्वथा अयोग्य है। वह दिन रात होली के समान दम्भ में दग्ध होता रहता है। और जो रहे गर्व के गोरी चढ़े दुहाग जरा जसोरी 22 अखरावट। अहंता उसे प्रभु से विमुख कर देती है, वह ईश्वर का सखा नहीं शत्रु बन जाता है। गर्व करे जो हो करी बैरी सोई गोसाई कहई 19 अखरावट। प्रियतम की प्राप्ति का प्रमाण अहम का बलिदान है। रत्नसेन का सिंहगढ़ पर चढ़ना, चोर की तरह पकड़ा जाना, फिर शूली पर चढ़ने का दृश्य, सभी बातें उसकी बलिदानी भावना को अभिव्यक्त करती हैं। संपूर्ण समर्पण का भाव, अहंकार का एकांत तिरोभाव सुआ के उन शब्दों में प्रकट होता है जो उसने रत्नसेन के संबंध में पद्मावती को सुनाए थे। तुम ओही के घट वह तुम माहा, काल कहाँ पावे वह छाहा 258 पद्मावत। जिसने अपने आप को मिटा दिया, जो परकाया में प्रवेश कर गया, जिसने अपनी सत्ता को प्रभु की सत्ता में विलीन कर दिया, उसे काल कैसे प्राप्त कर सकता है? वह तो अकाल अलख अविनश्वर बन गया। अहम के इस बलिदान के पश्चात रत्नसेन का पद्मावती के साथ जो विवाह होता है वह अध्यात्म पक्ष में जीव का ईश्वर के साथ एक हो जाना है। जिसकी सिद्धि दोनों के मध्य अंतर डालने वाले अपने आप को खोकर ही होती है। बीचु ते आपू ही खोई मोहम्मद एक होई रहू 15 अखरावट। साधक को अपनी यात्रा में एक मार्गदर्शक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अनेक साधक इस यात्रा में कुछ दूर चलकर अपरिपक्व अवस्था में ही स्वयं गुरु बनने के फेर में पड़ जाते हैं। अपनी यात्रा का विस्मरण करके जो साधक कतिपय सिद्धियों के पाश में जकड़ कर अपने को कृतार्थ समझने लगते हैं और गुरुडम के चक्र में पड़ कर शिष्य बनने आने लगते हैं, वे अपने गंतव्य स्थल पर कदापि नहीं पहुंच सकते। जैसे लिखते हैं, जब लगी गुरु हो अहा न चीन्हा, कोटि अंतर पथ बीच ही दीन्हा। जब चीन्हा तब और न कोई, तन मन जीव जीवन सब सोई। हो करत धोख इतराही, जब भा सिद्ध कहाँ पर चाही। 245 पद्मावत। गुरुडम का भाव, अपने आप को सिद्ध समझने का भ्रम, अपने अस्तित्व का बढ़ा चढ़ाकर मूल्य आंकना अहंकार से उत्पन्न होता है। जैसा लिख चुके हैं, अहंकार साधक का प्रबल परितापी शत्रु है। जब तक यह उपस्थित है, साधक संसार में उलझा रहेगा और उसका लक्ष्य आंखों से ओझल हो जाएगा। अहंकार को शमन करना ही पड़ेगा, तभी साधक अपनी पृथक प्रतीत होती हुई सत्ता को मारकर अपने प्रियतम को प्राप्त कर सकता है। वास्तव में आत्मा के ऊपर जितने पर्दे पड़े हैं, सूक्ष्म स्थूल कारण शरीरों के रूप में जितना भार उसके ऊपर लगा है, आलस्य द्वेष राग तृष्णा वासना पुंज आदि के जिन घेरों में वह घिरा है, उन सब से उसे मुक्ति प्राप्त करनी है। साधना पथ में यही सब विघ्न बनकर खड़े हो जाते हैं। द्वेष उसे जलाता है, तृष्णा तथा राग उसके पैरों में बेड़ी डाल देते हैं और उसे अध्यात्म पथ पर आगे नहीं बढ़ने देते। वासना पुंज पीछे की ओर घसीटता है, बेचारा साधक इन सबके बोझ से दबा हुआ मार्ग में डगमगाने लगता है। पग पग पर उसे आपदाएं खड़ी दिखती हैं। अपने बलबूते पर यात्रा की संपूर्णता उसे अशक्य जान पड़ती है। वह सकरुण दृष्टि से किसी सहायक को पुकार उठता है, जिसकी कृपा और अवलंब उसे पार लगा सके। जैसी ने अपनी रचनाओं में ऐसे तीन सहायकों का नाम लिया है। तीन सहायक। एक, गुरु कृपा। ऊपर जिन विघ्नों का वर्णन किया गया है, वे सूर्य रूपी आत्मा पर लगे हुए ग्रहण के समान हैं। इस ग्रहण से सर्वप्रथम मोक्ष दिलाने वाला गुरु है। गुरु की कृपा से साधन संबल विहीन साधारण सत्संगी जन भी उच्च कोटि के संत होते देखे गए हैं। जैसी लिखते हैं, दाद आया जा कह गुरु करई, सो सिख पंथ समुझी पग धरई। सात खंड और चारी निसेनी, अगम चढ़ाव पंथ तिरबेनी। तो वह चढ़े जो गुरु चढ़ावे, पाँव न डगे अधिक बल पावे। जो बरु सकती भगति भात चेला, होई खेलार खेल बहु खेला। 24 अखरावट। गुरु की दया से शिष्य मार्ग को समझकर आगे पैर रखता है। उसे सतखंडा महल पर 400 पानों से होकर चढ़ना पड़ता है। यह चढ़ाई बड़ी कठिन है। इसके बीच में प्रवाहित त्रिवेणी की धारा तो और भी अधिक दुस्तर है, पर यदि गुरु की कृपा साथ है तो साधक इस दुर्धर्ष चढ़ाई पर चढ़ता चला जाता है। न उसके पैर डगमगाते हैं और न उसे निर्बलता का आभास होता है। जो साधक इस प्रकार गुरु कृपा की शक्ति पाकर भक्ति भाव पूर्वक गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर देता है, वही साधना रंग भूमि का सच्चा खिलाड़ी है। जो अपने बलबूते पर चढ़कर गुरु की कृपा के बिना सात खंडों का उल्लंघन करना चाहता है, वह अपने पैर तोड़कर नीचे गिर पड़ता है। गुरु के बिना जब पथ ही दिखाई नहीं देता, तो वह साधक जो गुरु को मिटाता है, कितनी बड़ी भूल करता है। बिनु गुरु पंथ न पाई, भूले सोई जो मेट, जोगी सिद्ध होई तब, जब गोरख सो भेट। 212 पद्मावत। नव रस गुरु पह भीज, गुरु प्रसाद सो पियू मिले, जामी उठाए सो बीज, मोहम्मद सोई सहस बूंद। 46 अखरावट। गुरु सर्वप्रथम साधक के हृदय क्षेत्र में प्रभु मिलन की आकांक्षा का बीज डाल देता है। यह अंतर्निहित बीज गुरु के प्रसाद रूपी नवरसों से भींग कर जमता और अंकुरित तथा पल्लवित होता हुआ प्रिय मिलन रूपी सुफल प्रदान करता है। गुरु जो पढ़ायूं नाव चढ़ायूं, तीर घाट में पायूं रे। 19 महरी बाई थी। गुरु शिक्षा देते हैं और अपनी कृपा रूपी नाव पर चढ़ाकर शिष्य को किनारे लगा देते हैं। गुरु की कृपा से शिष्य का कायाकल्प हो जाता है। इस नूतन निर्माण में वह अमरता का अनुभव करने लगता है। जा कहा गुरु करे असी माया, नव अवतार दे नहीं काया। 128 पद्मावत। 2, रसूल की दया। आखिरी कलाम दोहा खंड 24 में जिब्राइल हजरत मोहम्मद को उठाते हैं और कहते हैं कि वे अपने अनुयायियों के साथ चलकर ईश्वर के दरबार में जुहार करें। जैसी लिखते हैं, इतने बचन जब ही मुख काढ़े, सुनत रसूल भये उठ ठाड़े। जहाँ लगी जीव मोख सब पाए, अपने अपने पिंजर आए। जिब्राइल के वचनों को सुनकर रसूल खड़े हो गए और उनकी कृपा से उनका नाम लेने वाले सब जीव मुक्त हो गए। इसी ग्रंथ के दोहा खंड 44 में जैसी पुनः लिखते हैं, झूठे सबही आप पुनि साचे, सबही नबी के पाछे बाँचे। सब झूठे हैं, एक रसूल ही सच्चे हैं। इन्हीं सत्य रूप नबी अर्थात रसूल के पीछे उनके सब झूठे अनुयायी भी प्राण पा गए और बहिष्ट के भोगों को भोगने के अधिकारी बने। सदा आनंद मोहम्मद सब सुख माते भोग। 60 आखिरी कलाम। पद्मावत दोहा खंड 11 में भी जायसी ने कयामत के दिन हजरत मोहम्मद की कृपा से जीवों के मुक्त होने का वर्णन किया है। हजरत मोहम्मद ईश्वर के रसूल हैं, दूत हैं। उनका नाम लेने से मनुष्य भवसागर से पार होता है, ऐसा जायसी का अभिमत है। वे यह भी लिखते हैं कि जो प्राणी जन्म पर्यंत हजरत मोहम्मद का नाम लेने से वंचित रहता है उसे नरक में स्थान मिलता है। वैष्णव संप्रदाय में भी इसी प्रकार की मान्यता प्रचलित है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये भी स्यु पाप यो नयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास्ते अभी यान्ति पराम गतिम। 9:30-32। दुराचारी व्यक्ति भी श्री कृष्ण की सेवा में आकर साधु बन जाता है तथा पाप योनि वाले अधम व्यक्ति भी श्री कृष्ण के आश्रय से परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसी उक्तियां संभवतः भक्ति भाव की महत्ता प्रकट करने के लिए कही जाती हैं। 3 प्रभु की कृपा। जैसे प्रिय के रोष से चंद्रमा के समान निर्मल पत्नी ग्रहण ग्रसित तथा कालिमा वृत्त हो जाती है, वैसे ही प्रभु की रोषाग्नि में दग्ध होकर प्राणी संसार के मरुस्थल में भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकता फिरता है। प्रभु यदि रूठ गए तो जीव को सुख के लिए कहीं भी स्थान नहीं मिलता। साचा सोई और सब झूठे ठाव न कतहूं ओन के रूठे। 6 आखिरी कलाम। पर यदि मानव प्रभु की आज्ञा में रहता है, उसके कोप से भयभीत होकर पाव पथ पर पैर नहीं रखता तो वह प्रभु का प्यारा बन जाता है। प्रभु एक के नहीं सबके हैं। रानी और चेरी का उनकी दृष्टि में भेद नहीं है, परंतु भला वही है जिस पर उनकी कृपा होती है। का रानी का चेरी कोई जाकह भया करहु भली सोई। 91 पद्मावत। प्रभु ही साधक का सर्वश्रेष्ठ अवलंबन है, उसके अतिरिक्त निराश व्यक्ति के लिए आशा का सच्चा आधार और है ही कौन। चित्तौड़ का ब्राह्मण व्यापारी सिंघर की हाट से खाली हाथ चलकर जब पश्चाताप करने लगा तो वह अपनी क्लांत एवं चिंतनीय दशा में इस प्रकार प्रभु से याचना करता है। साथ चला सत बिछला भय बीच समुद्र पहाड़ आस निराशा हो फिरो तू विधि देही आधार। 75 पद्मावत। जब प्रार्थना सच्चे दिल से निकलती है तो प्रभु अवश्य कृपा करते हैं। याचक ब्राह्मण पर प्रभु की कृपा हुई और उसकी प्रार्थना भी सफल हुई। पद्मावत में इसी प्रकार पद्मावती तथा रत्नसेन के हृदय के अंतर्तम से निकली हुई प्रार्थनाएं पूर्ण होती हैं। प्रभु की कृपा का वरदान 3 दलित एवं प्रणत भक्त को सदैव प्राप्त हुआ है। अंत में प्रभु की कृपा ही जीव को मोक्ष का अमृत प्रदान करने वाली सिद्ध होती है। जो ठाकुर अस दारुण सेवक कई निर्दोष माया करे मोहम्मद तो पै हो ही मोख। 6 आखिरी कलाम। गुरु अथवा रसूल की दया भी प्रभु की कृपा के अभाव में कृत कार्य नहीं हो सकती। आखिरी कलाम की अंतिम पंक्तियों में जैसी ने इसी तथ्य पर प्रकाश डाला है, जो मोही चहो निबारहु कोहु तब विधि करे उमत पर चोहु। 41 आखिरी कलाम। गुरु और रसूल भी प्रभु की कृपा से ही शिष्य पर द्रवित होते हैं और साधना पथ पर उसकी सहायता करते हैं। तिथि। साधना किसी व्यक्ति विशेष अथवा संप्रदाय विशेष की संपत्ति नहीं है। साधना का पथ क्रियात्मक परा विद्या का पथ है जिस पर विरले व्यक्ति ही चल पाते हैं। 10 माह एक जाई कोई करम धर्म सतनेम। 148 पद्मावत। प्राक्तन जन्मों के पुण्य ही मानव को इस पथ का पथिक बनाने में समर्थ होते हैं और पथिकों में अत्यंत विरले हैं वे व्यक्ति जो सिद्धावस्था तक पहुंच पाते हैं। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यदि सिद्धये यतामपि सिद्धानां कश्चित् माम वेत्ति तत्त्वतः। प्रायः सभी संत साधना पथ की इस विशेषता की ओर निर्देश करते रहे हैं। जैसी कबीर सूर और तुलसी इसी पथ के पथिक थे। जैसी सिद्ध योगी थे, उन्होंने सिद्धावस्था में जिस ज्योति का साक्षात किया उसकी एक झलक वे अपने पाठकों को भी दे गए हैं। नीचे हम उनकी रचनाओं से कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जो इस तथ्य पर प्रकाश डालते हैं। सत की झलक। जैसी का दृढ़ विश्वास है कि मानव जिस वस्तु की अभिलाषा करता है उसे वह अवश्य प्राप्त होती है। आवश्यकता है उस अभिलाषा के साथ अविचल निष्ठा की। जैसे भ्रमर कमल के सौरभ और रस के आस्वादन की आकांक्षा के लिए बाधाओं की वर्णी में दग्ध होकर भी आगे बढ़ता जाता है और अंत में अपने अभीष्ट को प्राप्त करता है। जा करी आस होई असी जा कह सही पुनी ता करी आस भंवर जो डाठा कमल कह कस न पावरस पास। 314 पद्मावत। उसी प्रकार साधक प्रभु प्राप्ति की अभिलाषा में उसके नाम का जाप करता हुआ सांसारिकता से उपरत किंतु उन्मनी अवस्था की ओर निरत होता जाता है तो एक दिन उसे उस सत्त्व की झलक प्राप्त हो ही जाती है। चातक यदि प्रिय को पुकारता हुआ अपने मुख को सुखाता और जीवा को क्षीण करता है तो कभी न कभी स्वाति नक्षत्र की मेघ वर्षा का एक बिंदु उसके कंठ में पहुंचकर उसे अनुपम सुख एवं शांति प्रदान करता ही है। लालसा से भरी हुई सीप जब टपटकी लगाकर ऊपर को देखती है तो उसे भी मोती उत्पन्न करने वाला तरल जल बिंदु प्राप्त हो ही जाता है। पीयू पीयू करत जीव घनी सूखी बोली चातक भांति परी सुबूंद सीप जनु मोती हिये परी सुख साती। 317 पद्मावत। इसी प्रकार पद्मावत का रत्न सेन सच्चे साधक की भांति पद्मावती की प्राप्ति के लिए जब कष्टों को पैरों तले रौंदता हुआ अपने साधना पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहा तो हृदय लादक प्रशांत परिस्थिति में पहुंचकर सिंगल दीप का वह राजभवन उसे दृष्टि गोचर हुआ जो पद्मावती रूपी सिद्धि का मिलन स्थल है। रत्न सेन इस दृश्य को देखते ही आत्मविभोर हो उठा और सुआ से कहने लगा, गुरु सुआ बताओ आज सूर्य कहाँ उदय हुआ है, हम लोग किस स्थान पर आ पहुँचे हैं। यहाँ तो पवन शीतल सुगंध लेकर आ रहा है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे जलते हुए शरीर के ऊपर किसी ने चंदन लगा दिया हो, हमारा शरीर इतना शीतल कभी नहीं हुआ था। अग्नि में चलते हुए हम लोगों के लिए यह मलयाचल के शीतल तथा सुगंधित पवन का काम कर रहा है। सूर्य किरणों की आभा निकलती चली आती है, अंधकार नष्ट हो रहा है, संसार निर्मल दिखाई दे रहा है, आगे बादल सा उठता हुआ चला आ रहा है और आकाश को स्पर्श करती हुई बिजली चमक रही है। उसके ऊपर एक ऐसा प्रकाश है जैसे चंद्रमा चमक रहा हो और उसे कृतिकाओं ने आच्छादित कर लिया हो। चारों दिशाओं में और भी अनेक उज्ज्वल नक्षत्र स्थान स्थान पर दीपक के समान जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं दक्षिण दिशा की ओर निकट ही स्वर्ण के समान दीप्तिमान सुमेरु पर्वत दृष्टिगोचर हो रहा है और संसार में मुझे कुछ ऐसी सुगंध फैलती हुई प्रतीत होती है जैसे वसंत ऋतु ही आ गई हो। 159 पद्मावत। यह है उस सत्य की झलक जिसे आचार्य वल्लभ ने संधिनी शक्ति कहा है। यही वह ज्योति है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाली है। प्लोटिनियस बिलीव्ड इन विजन नॉट एज एन इंडिस्पेंसेबल कंडीशन बट एज ए पॉसिबिलिटी फॉर ए प्योर सोल टू एंजॉय द साइट ऑफ द सुप्रीम सोल। सुस्तरी आउटलाइंस ऑफ इस्लामिक कल्चर पेज 391। आज्ञा चक्र की खुलते ही योगी को इस ज्योति के दर्शन होने लगते हैं, पर यह ज्योति सर्वश्रेष्ठ ज्योति नहीं है, इससे भी उत्तर और उत्तम कोटि की ज्योतियाँ आगे आती हैं। यह ज्योति प्रभु के सामिप्य की एक झलक भर साधक को दिखा जाती है जो साधना क्षेत्र में पर्याप्त नहीं समझी जाती। जब तक अपना अभीष्ट प्रिय प्रभु प्राप्त न हो जाए तब तक साधक को चैन कहाँ। आत्मदर्शन। साधकों के अनुभव में त्राटक की साधना जिस विद्युत ज्योति के दर्शन कराती है वह अंतिम शाश्वत एवं नित्य सिद्धि नहीं है। साधक यदि इसके आगे न बढ़ा तो नीचे गिर सकता है। यह पुराणों का स्वर्ग है जहाँ जीव अपने सुकृत के भोगों को भोग कर पुनः मर्त्य लोक में लौट आता है। इससे ऊपर आत्म साक्षात्कार की वह अवचल अवस्थिति है जहाँ मर्त्य लोक की निखिल शुभाशुभ आकांक्षाएं टक्कर मारकर स्वयं अपना शेर फोड़ लेती हैं, पर उसका बाल तक बांका नहीं कर पाती। आत्मज्ञानी को लौकिकता संप्रत नहीं कर पाती। वह इस स्वरूपावस्था में पहुँच कर फिर यहाँ लौट कर नहीं आता। जो गा तहा भुलाने उसोई जे गे जुग बीत न बहुरा कोई। 95 पद्मावत। यह वह अमृत जड़ी है जो स्वयं तो मरण से दूर रहती ही है, अपने संपर्क में आने वाले को भी अमर बना देती है। इसे प्राप्त करने के लिए हिमालय रूपी आज्ञा चक्र को अतिक्रांत करना पड़ता है। नांगी हिमंचल जो तहा जाई अमृत मूरी पाई सो खाई। 16 अक्रावट। काष्ठ में निहित अग्नि जैसे प्रज्वलित होती है, तालाब में जैसे कमल विकसित हो जाता है, उसी प्रकार साधक के हृदय के अंदर आत्म ज्योति जगमगाने लगती है। इस ज्योति के जागृत होने पर न पाप रहता है न पुण्य, मर्त्य लोक रहता है न स्वर्ग। काठ ही घसन से उठे जस आगी, दर्शन देख ही उठे जस तस जागी। जस सरवर महापंकज देखा, ही के आँख की तरह सब लेखा। जासु कया दर्पण कै देखू आप मह आपू जाई मिल, जहाँ नहीं पुण्य न पाप। 38 अखरावट। देखत गा कबिला सही, दृष्टि पाप सब भागू। 288 पद्मावत। कहा न मीचू न नीदू दुख, रह न देह मा राग। 60 आखिरी कलाम। आत्म प्रकाश के आगे मोती माणिक्य हीरा रत्न आदि का प्रकाश तो जहाँ तहाँ, विद्युत चंद्र और सूर्य का प्रकाश भी निष्प्रभ हो जाता है। जिस मन को साधना में स्थिर किया था वह इस प्रकाश से प्रदीप्त होता है। समस्त रूपों सौंदर्यों का भी वह स्त्रोत्र है। एक चमकार होई उजियारा, छपे बीज तहिके चमकारा। चांद सूरज छपी है बहु ज्योति, रतन पदारथ मानिक मोती। सो मन दिपे जो कीन थिराई, छये सुरंग घात पर आई। ओहु रूप निर्मल होई जाई, और रूप उही रूप समाई। 51 आखिरी कलाम। ब्रह्मांड के नव खंड उसी प्रकाश की परछाई को ग्रहण करने वाले सूर्यादि से प्रकाशित होते हैं। उसके रूप के समान यहाँ किसी का भी रूप नहीं है। वही ज्योति परछाई नवो खंड उजियार जही क्या ज्योति स्वरूप चांद सुरुष तारा भय तही का रूप अनूप मोहम्मद बर्निन जाय किछु 49 अखरावट। आत्म साक्षात की सिद्धि समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति है। यही समस्त दुखों का अंत है। अखिल आशाओं और अभिलाषाओं की अंतिम गति भी यहीं तक है। अब सब गये जन्म दुख धोई जो चाहिए हटी पावा सोई मन के जेति आस सब बूझी रह न कोहु और आस गति दूजी 52 आखिरी कलाम। प्रकृति के उदात्त तत्व पवन पानी चंद्र सूर्य तथा उनसे उत्पन्न रात्रि एवं दिवस किसी की भी वहाँ पहुँच नहीं हो सकती। जहाँ न रात्रि न दिवस है जहाँ न पवन न पानी 68 पद्मावत। आत्म साक्षात योग के शब्दों में दृष्टा का अपने रूप में अवस्थान है। अपने को जानकर ही साधक परमात्मा को जान पाता है। जय पावा ते आप ही चीन है 215 पद्मावत। आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान में गुण का नहीं केवल मात्रा का अंतर है। पद्मावत के कथानक के अंतर्गत जैसी ने इस आत्म ज्योति का वर्णन उस स्थल पर भी किया है जहाँ अलाउद्दीन चित्तौड़ करके पद्मावती का प्रतिबिंब दर्पण के अंदर देखता है। कुछ सूफी ईश्वर और उसके प्रतिबिंब में अंतर नहीं मानते। इसी आधार पर जैसी लिखते हैं, होता ही तरस परस भा लोना धरती सड़क भयो सब सोना 569 पद्मावत। इस लावण्य में दर्शन ने पारस का काम किया। जैसे लोहा पारस पत्थर को छूते ही सोना बन जाता है, उसी प्रकार इस दर्शन के स्पर्श ने सब कुछ स्वर्ण ज्योति में परिवर्तित कर दिया। इस अवस्था में धरित्री कैसे रह सकती थी। जावास से लेकर पृथ्वी पर्यंत एक अद्भुत ज्योति जागृत हो गई। स्वर्ण जैसी चमचमाहट दृष्टिगोचर होने लगी। वेद के तपापूत ऋषि ने प्रार्थना की थी, अगन्म ज्योति उत्तमम, प्रभु हमें उत्तम ज्योति प्राप्त हो। यही उत्तम ज्योति जिसके आगे अंधकार की तो बिसाती क्या साधारण ज्योतियां भी नहीं ठहर सकती, साधक को प्राप्त हो गई। उसके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश ओतप्रोत हो गया। साधक जहां से निकला था उसी में समा गया। प्रेमी और प्रिय दोनों मिलकर एक हो गए और मुक्ति रूपी मुक्ता माणिक्य के साथ ज्योति ज्योति में लीन हो गयी। ढूंढी उठे ले मानिक मोती जाई समाई ज्योति महाज्योति 26 अखरावट। निर्मल ज्योति बरनी नहीं जाई निरखी सुन्न महासुन्न समाई 29 अखरावट। स्वर्ग का वर्णन। पीछे सत की झलक में स्वर्ण के समान दीप्तिमान जिस सुमेरु पर्वत का नाम आया है वह प्रकृति का सर्वोत्तम अंश है। सूक्ष्मतम तत्व है, सबसे ऊंचा कूट है। इस ज्योतिर्मय सत के कूट पर स्थित है उस कूटस्थ का आभावान भवन ज्योतिर्मय धाम, जिसे जायसी ने हठ योगियों की पद्धति में देवाधिदेव महादेव का मंडप कहा है। राजा रत्नसेन सुमेरु पर्वत पर चढ़कर इस सर्वांग स्वर्ण निर्मित ऊंचे मंडप को देखता है। इसमें समस्त अमृत फल परिपूर्ण रूप से लगे हुए हैं। संजीवनी जड़ी भी यहाँ विद्यमान है। मंडप के चारों ओर द्वार हैं जिनमें किवाड़ लगे हुए हैं। चारों द्वारों पर देवता बैठे हैं। मंडप के भीतर चार खम्भे लगे हैं। इन खम्भों का जो स्पर्श कर लेता है उसके समस्त पाप भाग जाते हैं। मंडप में शंख और घंटे बज रहे हैं तथा अनेक प्रकार के जाप और होम चल रहे हैं 164 पद्मावत। स्वर्ग का यह वर्णन पूर्ण रूप से पौराणिक है, जिसमें लौकिकता के अंदर पारलौकिकता का समावेश रहता है। जैसी ने शिवालयों में यज्ञ जप आदि का अनुष्ठान देखा होगा। शंख और घंटे आरती के समय बजते ही है। स्तंभ आदि भी मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक हैं। इन्हीं सब बातों को उन्होंने पौराणिक शैली में प्रस्तुत कर दिया है। अमृत फल और संजीवनी जड़ी स्वर्ग में होनी ही चाहिए, जिनके उपयोग से स्वर्गस्थ प्राणी मरण का अनुभव न कर सके। स्वर्ग वैसे भी अमरों का निवास स्थान माना गया है। प्रत्येक द्वार पर देवता द्वारपाल के रूप में बैठे हैं, जो कुरान प्रतिपादित बेहिश्त के फरिश्तों की याद दिलाते हैं। वैष्णवों ने इसी प्रकार के भवनों का वर्णन राधा और कृष्ण के संबंध में किया है। इस विषय में पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 74 से 77 और ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड अध्याय 4, 5 और 92 देखने योग्य हैं। आखिरी कलाम के अंत में जैसी ने हजरत मोहम्मद को दुल्हा और उनकी उम्मत अनुयायियों को बरातियों का रूप देकर बेहिश्त भेजा है। कुरान के बेहिश्त हूरों तथा भोग विलास के विपुल उपकरणों से भरी पड़ी है। इस विलास का एक चित्र आखिरी कलाम में देखने को मिलता है। हजरत मोहम्मद की बारात को आते हुए देखकर बेहिश्त के दरवाजे पर बाजे बजने लगते हैं और भीतर से गीतों की मीठी झनकार सुनाई देती है। अप्सराएं बन ठनकर बेहिश्त के मार्ग में रसूल की प्रतीक्षा कर रही हैं। रसूल के पहुंचते ही आठों ड्योढ़ियों के द्वार खुल गए। समस्त बराती सवारों ने अंदर प्रवेश किया। हूरों ने मिलकर रसूल के ऊपर न्योछावर की। सबके मुखों से रसीले फूल झड़ने लगे। अगर कुमकुम कस्तूरी कपूर आदि से बेहिश्त का मंदिर सुवासित हो उठा। स्थान स्थान पर आमोद प्रमोद और क्रीड़ा होने लगी। हजरत मोहम्मद ने सब हूरों को सुहाग प्रदान किया। सब सुख और विलास में मग्न हो गए। 56 आखिरी कलाम। इस दृश्य में हजरत मोहम्मद के अनुयायियों को एक एक मंदिर जिसमें 7 द्वार थे निवास करने के लिए मिला। द्वारों में अगर और चंदन के किवाड़ लगे हुए थे। इन मंदिरों में हरित वर्ण के कई खंड थे। निर्मल कुमकुम का गिलावा लगाकर स्वर्ण और चांदी द्वारा इन मंदिरों का निर्माण देव ने स्वयं अपने हाथों से किया था। इनमें हीरा रत्न आदि ज्योतिषमान नग जड़े हुए थे। दूध की नदियाँ बह रही थी। मोती और माणिक के पृथ्वी पर पड़े हुए थे। बेहिश्त में न गर्मी थी न जाड़ा था न गुनगुन अर्थात कम उष्णता ही थी। न वहाँ दिन था न रात्रि। नींद भूख दुख आदि वहाँ कुछ भी नहीं था। केवल सुख की अतिशय विलासिता में सब डूबे हुए दिखाई देते थे। 57 आखिरी कलाम। हजरत मोहम्मद को वर के रूप में पाकर गुरों के हृदय में आह्लाद की सीमा नहीं रही। उनके साथ नित पीरीत नित नव नव नेहू नित उठी चौगुन जुड़ स्नेहू। 60 आखिरी कलाम। यह नव नव स्नेह वैष्णव के उज्जवल रस सूरदास प्रभु राधा माधव ब्रज विहार नित नई नई 4910 सूर सागर नागर प्रचारणी सभा का स्मरण दिला देता है। महरी 22 पद खंड 12 में जायसी ने जिस श्रृंगार सज्जा और अंगों के लिए उपमानों का वर्णन किया है वह सूर सागर में वर्णित राधा के श्रृंगार से समता रखता है। ऊपर जिस वेश का वर्णन किया गया है वह मृत्यु निद्रा दुख रोग आदि से शून्य और आनंद का धाम मानी गई है। स्वर्ग के इस वर्णन में लौकिक सुख की अतिरंजित अवस्था का चित्र मात्र है। पर सबकी झलक और आत्मदर्शन के विषय में जायसी का जो अभिमत हम इसके पूर्व प्रकट कर चुके हैं वह सिद्ध योगियों के अनुभव से मेल खाता है और उन्हें उच्च कोटि का साधक सिद्ध करता है। इस सिद्धावस्था में जायसी ने अहम की समाप्ति के साथ जीवात्मा के अस्तित्व को भी समाप्त कर दिया है। प्रिय कर खेल मरण धनिया कर बोले कछु न बताई गए 13 महरी बायसी। जह बनी बिगरी न पारिधिता पारिधि की बुंदता बिले है बुंद बिबस बिचारी की। उद्धव शतक जो उनके अद्वैतवाद के अनुकूल ही है। कुरान भी रूहों के अनादि अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती। जायसी पर इस्लामी एकेश्वरवाद और भारतीय अद्वैतवाद दोनों का प्रभाव पड़ा है। सिद्ध पुरुष जायसी ने सिद्ध पुरुषों के नाम लिए हैं और पद्मावत के कथानक के अंतर्गत उनके लक्षण भी दिए हैं। दोहा खंड 20 में उन्होंने अपनी गुरु परंपरा में सैयद मोहम्मद का उल्लेख किया और उन्हें सिद्ध पुरुषों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए वे लिखते हैं सिद्ध निर्भय होकर रात्रि में भ्रमण करते हैं। उनकी दृष्टि जिधर उठ जाती है उधर ही चल देते हैं। उन्हें प्राणों का कुछ भी भय नहीं रहता। खड्ग देखकर वे ग्रीवा झुका देते हैं। सिद्ध वहाँ पहुँचते हैं जहाँ प्राणों का वध होता है। सिद्धों के अतिरिक्त अन्य ऐसा कौन है जिसने मृत्यु के पंखों को धारण किया हो। सिद्धों का शरीर पारे के समान अमर होता है जिसे बल से नहीं छल से ही मारा जा सकता है। सिद्धों की दृष्टि आकाश में गृध के समान लगी रहती है। दोहा खंड 212 में जायसी ने सिद्धों के संबंध में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो परंपरा से लोक में प्रचलित रही हैं और काव्य ग्रंथों में भी जिन्हें स्थान मिला है। सिद्धों के शरीर पर मक्खी का न बैठना उनकी आंखों का अनिमेष रहना अर्थात पलक न लगना सिद्धों के साथ छाया भूख तथा माया ममता का अभाव सिद्धों का प्रकट एवं गुप्त सभी दृश्यों को देख लेना आदि ऐसी ही बातें हैं। इनमें से कुछ बातें तो बुद्धिगम्य हैं परंतु अधिकांश कल्पना प्रसूत जान पड़ती हैं।